धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम कुछ क्षण की प्रार्थना के लिए खड़े रहेंगे। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और वे सब जो अपने आप को प्रार्थना में याद करवाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाकर और कहें, परमेश्वर ये मैं हूँ। अति पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इन लोगों को उन विनतियों के साथ आपके सम्मुख लाते हैं जो उनके पास है, उन्होंने याद करने के लिए कहा है और प्रभु मेरे हाथ भी ऊपर उठे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप हम पर दया करें, आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जाए जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। पिता, हम आज रात आजादी की आत्मा के लिए दया को मांगते हैं जिससे कि हम लोगों को सुसमाचार की सच्चाई की ओर ले जा सकें और जो हमें इस घड़ी के संदेश पर विश्वास करना है आपकी कलीसिया के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस कलीसिया का भाग हैं जिसे अंतिम दिनों में बाहर बुलाया जाना है। पिता, यदि हम उसका भाग नहीं है तो तब हम पर प्रकट कीजिए हमें उसका भाग होने के लिए क्या करना होगा और हमें अनुग्रह और सामर्थ्य इस परीक्षा की घड़ी में जो धरती पर है, उन हरेक को परखे जो यहाँ पर उपस्थित है। हमें तेरी पवित्र आत्मा दे ताकि हमारी अगुवाई करे और नेतृत्व करे जिससे हम अतः अंत समय पर पहुँच सके, शांति में तेरे पास आ सके अनंत जीवन के लिए, जिसे आदि से लेकर उन सारे विश्वासियों ने आगे की ओर देख चुके हैं। हमारी सहायता करे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं सचमुच में सौभाग्य के लिए आभारी हूँ जो आज रात यहाँ पर है और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आभारी हूँ जिसे यीशु मसीह के जरिए से दिया गया है। और फिर आज सुबह के संदेश के बारे में, अब मैं चाहता हूँ हर एक जन पूरी तरह से समझ जाए। अब मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ कि क्या यह वो समय नहीं है, समझे, लेकिन संदेश सच्चाई है, संदेश सत्य है। यह होगा, यह किसी समय तो होगा। यदि ये वो समय नहीं है और यह इतना उस समय के जैसा नहीं दिखाई देता है, जब तक मैं उस पहले के पौलुस जैसा अनुभूति नहीं करता जिसने कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, देखो हर एक चीज को किया जाना है। वहाँ पर एक बात थी जिसे मैंने आज सुबह को किया है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने एक भाई के नाम को लिया जो मैं सोचता हूँ कि ये गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कभी भी किसी व्यक्ति के नाम को नहीं लेना चाहिए। और यदि ये टेप उस व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा तो, और मैं उससे मिलकर और उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ वो भाई एक बड़ा व्यक्ति है, एक भला मनुष्य है जिन्होंने आज रात ठीक यहाँ पर प्रचार किया है, जो भाई डेविड डुप्लेसिस है। और मेरा उनका नाम लेने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं संदेश और इत्यादि के बारे में चिंतित था और इस बारे में कि क्या हो यदि वो समय नहीं होता है तो, और मैंने भाई के नाम को ले लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा करना क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैं भाई डेविड डुप्लेसिस से प्रेम करता हूँ, वह हमारे भाई है और मैं सोचता हूँ इस प्रकार के एक निपुण व्यक्ति जो वचन में और अधिक प्रशिक्षित होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है। ये डेविड और मेरे बीच में बात हुई थी, उसने एक बार सभाओं में मेरे बारे में कहा था, उसने ठीक यहाँ पुलपिट से या उस पुरानी कलीसिया से ठीक यहाँ पुलपिट से प्रचार किया था और उसके भाई जस्टिस, वो मेरे साउथ अफ्रीका में अनुवादक थे जहाँ पर मैं वापस जा रहा हूँ, और वो बहुत ही अच्छे परिवार से थे, एक पेंटिकॉस्टल घराने से, एक सच्चे अच्छे व्यक्ति है डेविड, जो मैं सोचता हूँ वह एक समय वर्ल्ड पेंटिकॉस्टल असेंबली के चेयरमैन थे और पेंटिकॉस्टल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में थे, वह एक चेयरमैन थे और बाद में वो आकर यूनाइटेड स्टेट में बस गए, टेक्सास में भाई गोल्डन लिट्से के साथ थे और फिर बस उन्होंने विभिन्न जगह में प्रचार को करना आरंभ कर दिया था। लेकिन ये क्या था, मैं सोचता हूँ जहाँ हमारे बहुमूल्य भाई ने गलती की, बिल्कुल जैसे मैंने गलती की है या कोई भी गलती करता है, उन्होंने ज्यादा और ज्यादा कहना आरम्भ किया। उन्होंने प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी को उन स्थानों के बारे में बोलना जारी रखा जिन्होंने उन्हें निमंत्रण किया था। वे समझ रहे थे वो जो कर रहे हैं वो सही है और एक प्रकार के आनंद को आदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन फुल गॉस्पल बिजनेसमैन जिन्होंने दुनिया भर में मेरी सभा को आयोजित किया है, देखा, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ, देखो, लेकिन मैं निश्चय ही उनके साथ सहमत नहीं होता हूँ जो सिद्धांत उनके पास है। वे वहाँ से हट गए हैं जो सिद्धांत उनके पास थे, जहाँ से उन्होंने आरंभ किया था, और अब वे उन बाकी के दूसरी संप्रदाय या जो कुछ भी है उनकी तरह बनते जा रहे हैं, समझे? और ये क्या है, वे पेंटिकॉस्टल बने रहने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वह मिले जुले पेंटिकॉस्टल और उन बाकी लोगों के साथ एकत्र होने की कोशिश कर रहे हैं। और यह मुझे उस भाई डुप्लेसिस के जैसा दिखता है, एक तरह के बहुत ही भले सभ्य व्यक्ति जो वचन के बारे में अधिक जानते होंगे, कि जब वो देखते हैं कि सोई हुई मूर्ख वारिया तेल को खरीदने की कोशिश कर रही थी, समय बीत गया, देखा? ध्यान रखना, जब वो तेल को लेने आई वहाँ कोई तेल नहीं बचा था, यह वचन है, और उसने कहा हमें तुम्हारा तेल दो उस कलीसिया के लिए, लेकिन उसने इसे ग्रहण नहीं किया। वो हो सकता है ऊपर और नीचे कूदी होगी, अन्य भाषा में बोली होगी और जो कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर के खुद के वचन के अनुसार उसने इसे ग्रहण नहीं किया, और वो वहाँ बाहरी अंधकार के अंदर थी, और वहाँ पर रोना, दर्द और दांतों का पीसना था, जब चुनी हुई दुल्हन अंदर चली गई और सियानी कुंवारी के पास दिए में तेल था। और मैं एक और व्यक्ति को जानता हूँ, एक समय कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। यह क्या है, इन भले लोगों को देखो, जरा सी बात को ले रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, लोगों के ऊपर थोड़ी सी पकड़ को रखते हैं, और पहली चीज आप जानते हैं कि वे समझते हैं कि ये परमेश्वर कर रहा है, और बहुत सी बार ये शैतान कर रहा होता है, देखा? यीशु के पास हेरोदेस के सामने आने का एक मौका था, उसके पास बहुत से लोगों के सामने आने का मौका था, और वे उन्होंने उसे तमाशा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, देखा? यही सब वे सारे पेंटिकॉस्ट के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटिकॉस्ट उन चीजों से बाहर आते हैं ताकि भिन्न बने, और जैसे कि सुअर उसके कीचड़ में और एक कुत्ता अपनी छाछ को चाटता है, फिर से वापस मुड़ जाते हैं, और अब वे दुनियावी परिषद में है, देखा? यह बहुत ही खराब बात है, यह एक शर्मनाक बात है। परमेश्वर मुझे छोटा और नम्र बनाए रखे, इसलिए कि वह उसकी सच्चाई को प्रकट कर सकता है, समझे? मैं कभी इसे नहीं करना चाहूँगा, कोई चमक दमक उजाला नहीं, और संसार के लिए कोई दमकना और प्रकाश का फैलना नहीं है। मुझे प्रभु के इन चंद तुच्छ लोगों के साथ राह पकड़ना है, मुझे वचन के साथ बने रहना है। अब दुनियाई परिषद के बारे में बात करते हुए जो वेटिकन के साथ जुड़ रही है, क्या विश्वास करते हैं कि वचन को लेकर वे जुड़ सकते हैं? वे संप्रदाय में हो सकते हैं, लेकिन वे वचन पर नहीं हो सकते हैं, समझे? यह सही बात है, इसलिए वह समझौता करने के लिए कुछ भी नहीं है, देखा? एक संप्रदाय, यह सब एक से ही है, सब कुछ एक सा ही है, यह सही रूप से एक ही शैली में है, वे माँ और बेटी है। लेकिन जब यह वचन के लिए बात आती है, मैं बस दृढ़ होकर मेथोडिस्ट के विरोध में हूँ, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन के विरोध में हूँ, वैसे ही जैसे मैं कैथोलिज्म के विरोध में हूँ, कारण यह माँ और बेटी ही हैं। इस वचन के अनुसार यही वो वचन है जिस पर मैं खड़ा हूँ, देखो यह इसका हर एक वचन। अब वो बहुमूल्य भाई, वो और उसकी पत्नी मेरे नजदीकी मित्र है। आप में से बहुतों ने उस किताब मैगजीन में देखा है, जहां कैसे वो परमेश्वर के भेजे हुए बहुमूल्य भाई जो अपनी पत्नी को ऐसा करने देते हैं। किसी ने उस बहन से कहा कि वह जैकलिन कैनेडी के जैसे दिखाई देती हैं, और उसने उनमें से एक की तरह बहुत विशाल बालों की शैली और इत्यादि को बनाए रखा था। यह क्या है, वो हर एक उस तरह के लोगों के साथ मिलती जुलती रहती है, और अतः एक अच्छा पुरुष एक बुरी स्त्री को लेता है, या तो वो एक अच्छी स्त्री बन जाएगी, मेरा मतलब एक अच्छा पुरुष एक बुरी स्त्री को लेता है, या तो वो एक अच्छी स्त्री बन जाएगी, या तो वो एक बुरा पुरुष बन जाएगा। आप मुझे अपनी संगति को दिखाएं, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, समझे? एक ही तरह के पंख के पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं, उन चमकदार चीजों से दूर रहो। मैं एक दिन पहाड़ के सबसे ऊपर खदान में नीचे उतर कर गया, जो एरिजोना और मैक्सिको के मार्ग पर है, भाई साउथमैन और मैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम वहाँ ऊपर एक साथ थे, और मैं वहाँ पर गया और मैंने कुछ ढेर को खोद निकाला। यह बिल्कुल ठीक सोने के जैसा दिखाई देता था, लेकिन एक तरीके से इसे आप कह सकते हैं कि यह सोना नहीं है, यह सोने से भी ज्यादा चमकदार होता है। यह चमकता है, और सोना चमकता नहीं है, यह उज्ज्वल होता है, समझे? और इसे धोखे का सोना कहते हैं। इसका मूल्य उस पत्थर से भी ज्यादा नहीं है, इसे लोह स्वर्ण मिश्रित कहते हैं। मैं सोचता हूँ वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं कि पानी और रसीला पदार्थ और अन्य दूसरे पदार्थ इतने अधिक नहीं होते हैं कि इसे कड़क बनाए और उस स्थान पर लेकर आए यह सोना बन सके, इसलिए यह ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन इसके अंदर कोई रसायन नहीं होता है। और बस इसी तरह से बहुत सारे कहलाने वाले विश्वासी मसीह हैं। देखो यह हॉलीवुड की तरह चमकेंगे, लेकिन कलीसिया सुसमाचार के साथ उज्जवल होती है। अब यहाँ पर कुछ बहनें हैं, बिली ने मुझे अभी दिखाया, काफी अच्छी बात को समझा कि जाकर इस लाइफ मैगजीन की तस्वीर को खींचे जो उस सात दूतों की है, और इस तस्वीर को लेकर और मुझे भेजा है। यह वो तस्वीर है। और अब यदि यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ही यहाँ से वो छोड़कर जा रहा था वापस ऊपर की ओर, जब दूतों ने उसके संदेश को लाया था, यह पिरामिड के आकार में था, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके घटित होने के 3 महीने पहले कि यह ऐसा होगा। क्या यह सही बात है? और सबसे आकर्षित दूत जो अपने पंखों को पीछे किए हुए इस तरह से पीछे की ओर फैलाए हुए था, आपको याद है, और उसका यह सर था इस गति से आता हुआ, क्या आप वहाँ पर पंखों को भी नहीं देखते हैं? और वहाँ पर वे दूत थे बिल्कुल उसी तरह से जैसे बताया गया था। अब केवल परमेश्वर ही इसे कर सकता है। उनके यहाँ भी एक तस्वीर पड़ी हुई है, एक स्त्री की, जिसने कहा, बहुत सी बार लोग कहते हैं, विवेक में आकर कहते हैं, ये व्यक्ति मृत्यु की छाया में है, एक घोर अंधकार। अब वे कहते हैं, तो ठीक है, उसने इसे ऐसे ही कहा होगा। देखो, यही वो लोग हैं जो आगे की ओर नहीं आ सकते हैं, वे इसे नहीं देख सकते हैं, वो आपके साथ चिल्ला सकते हैं, वे आपके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जब इस सब पर सचमुच विश्वास करने की बात आती है, संपूर्ण शरीर और मन से वे इसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन आप देखते हैं, यदि परमेश्वर इसमें है और सच्चाई को बता रहा है, ये इतिहास का अंतिम समय है, ये संसार के इतिहास का अंत है, यह समाप्त हो रहा है। अब किसी दिन और समय नहीं रहेगा, परमेश्वर हर एक चीज को प्रमाणित कर रहा है, दोनों ही आत्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से। जब मैंने कहा एक छोटा लड़का था, एक उजाले का स्तंभ और जो एक तारे की जैसा दिखता है, कितने लोगों को याद है, पहले के समय में वो हमेशा इसे तारा कहकर बुलाते थे। जब यह यहाँ नीचे नदी पर दिखाई दिया, उसने कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। अब अतः नीचे उतर आया और इसकी तस्वीर को लिया गया था। हमारे पास हमेशा ही वो तस्वीर होती है जो कहीं पर तो है। जी हाँ, वे कहते हैं वहाँ ऊपर कोने पर है, मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। वैज्ञानिक रूप से यह साबित होता है, यह सच्चाई है। और अब और लोग कह रहे थे कि छाया है। अब यहाँ पर एक स्त्री थी जिसकी एक तस्वीर है, वहाँ पर साधारण तरह से जैसे कोई दूसरी तस्वीर होती है, जैसे किसी एक ने इस एक तस्वीर को लिया उस कैमरे से। मैंने कहा, एक व्यक्ति उस बारे में सोच रहा था और मैंने उस व्यक्ति से कहा, तुम मृत्यु की छाया के नीचे हो, जो कैंसर है, वहाँ पर एक गहरी परछाई है। और उस स्त्री ने मुड़कर और तस्वीर को लिया, और वो स्त्री उस बात को बताने के लिए यहाँ पर थी, और हो सकता है आज रात को वो स्त्री यहाँ पर ही हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखा, अब वहाँ पर स्त्री उसके ऊपर एक काले टोप की तरह है, तो ठीक है। अब वहाँ पर वैज्ञानिक तौर से यह साबित होता है कि यह सच्चाई है। और उस स्त्री को तुरंत ही बताने के बाद कहा, सही है, उन्होंने तस्वीर को लिया और कैंसर वहाँ पर नहीं था। तब उस लेंस में क्या आया था और जो उसे छोड़कर जा चुका था, उसके उस लेंस पर नहीं आया जब उसे यह कहा गया था कि वो चंगी हो गई थी। देखा, अब यहाँ खड़े होकर आपको बताया था कि वे दूत आ रहे थे, भाई फ्रेड उसमें से एक है। मैंने भाई फ्रेड को कुछ समय पहले यहाँ पर देखा है। मैं सोचता हूँ कि ठीक वो यहाँ पर थे, लेकिन वो मुझसे कहीं तो ओझल हो गए हैं, वहाँ पीछे हैं, तो ठीक है। जहाँ पर मैं था, मुझसे वो 2 मील की दूरी पर खड़े थे, 1.5 मील की दूरी के अंतर पर या 2 मील की दूरी के अंतर में खड़े थे। उन्होंने विस्फोट को सुना, हिलावट को महसूस किया, और वो जो कुछ भी है जब ऐसा हुआ था, यह सही है भाई फ्रेड? और वहाँ पर वे दूत थे जिन्हें जीवन संदेश के साथ वापस भेजा गया था, और यहाँ पर पिरामिड के आकार में भी थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर वो होगा, आपको बताया था वहाँ पर खड़े होंगे मेरे जाने से पहले। तस्वीर के बाद तस्वीर को सारे देश भर में लिया गया था, मेक्सिको में इसे मापा गया था, और यह 30 मील ऊंचा और इसकी 27 मील चौड़ाई थी, और यह इतनी ऊंचाई पर था कि यहाँ तक कोई नमी भी नहीं होती है। नमी लगभग 8 या 9 मील की ऊंचाई से ऊपर नहीं होती है। वे ऐसी जगह पर थे जहाँ पर नमी नहीं बनती है, समझे? और ऐसा था, मैं सोचता हूँ, या तो ये 27 मील ऊंचा था और 30 मील चौड़ा था, या तो ये 30 मील ऊंचा था और 27 मील चौड़ा था, दोनों में से एक। लाइफ मैगजीन ने इसे छापा था या लुक मैगजीन में, ये कौन सा था, लुक या लाइफ? लाइफ, लाइफ मैगजीन में। मैं सोचता हूँ मई 17 को इसे प्रकाशित किया गया, ऐसा ही है। अब यहाँ पर है, ये वैज्ञानिक रूप से इसे साबित किया गया है कि यह सच्चाई है, इसलिए हम परवाह नहीं करते हैं कि यह सच्चाई है कि नहीं है, दोनों में वैज्ञानिक रूप से, आत्मिक रूप से जो कहा गया था जो पूरा हुआ है। इसलिए सात मोहरों का संदेश अपने समाप्ति पर है, यही संपूर्ण बाइबल का संदेश है। सात मोहरें नए करार को समाप्त करती है और इसे मोहर बंद करती है, यह सच्चाई है। हम जानते हैं यही है नबी के द्वारा बोला गया, विज्ञान के द्वारा और वचन के द्वारा बताया गया है। तीन इसकी गवाही को देते हैं कि यही सच्चाई है। इसलिए हम जानते हैं कि हम अंतिम समय पर हैं, हम यहाँ पर हैं। मैं नहीं जानता और कितना समय है, मैं वह हमें यह कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसका आगमन एक रात के शोर की नाई होगा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, बहनों, इसके बावजूद हम बस तैयार हो जाएं। आइए खुद को पवित्र करें, क्योंकि संसार आगे बढ़ता जाएगा, वे जानेंगे भी नहीं कि ये घटित हो चुका है। जब दया के दरवाजे बंद हो जाएंगे, प्रचारक उद्धार का प्रचार करेंगे, लोगों का पश्चाताप का कारण होगा। ऐसा ही होता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमेशा से होता आया है। दूसरे युगों में किया गया और इसे किया गया, इस युग में किया जाएगा। और रैप्चर और इतना जल्द होगा जिन्हें संसार कभी याद भी नहीं करेगा कि वह चले गए हैं। सही है, वे इसके बारे में कुछ जानेंगे भी नहीं। वो आकर और उसे उठाकर ले जाएगा, वो चली जाएगी, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। इसलिए प्रार्थना में रहना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम नहीं जानते वो कौन सी घड़ी होगी, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये बहुत ही जल्दी होगा। उन चमकती हुई चीजों से दूर रहें, सुसमाचार के साथ बने रहें, आप ठीक वहीं पर बने रहें। देखो और प्रार्थना करें। अब बिली ने मुझे यहाँ पर एक चिट्ठी को लिखकर दिया है, या मेरा मतलब कुछ तो लिखकर दिया है, और कहा है कि कोई तो एक बालक का समर्पण करवाना चाहता है। यदि ये ठीक है तो क्या है, अपने हाथ को उठाएं। यदि कोई, जी हाँ, दो बालक हैं, तो ठीक है, यहाँ उन्हें ऊपर लेकर आएं। और भाई नेविल, और मैं सोचता हूँ यदि हमारी बहन यहाँ कुछ समय के लिए पियानो पर आएंगी इन बालक के समर्पण के लिए। हम कुछ भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब याद रखना, कल रात इसी समय पर प्रभु ने चाहा तो मैं न्यूयॉर्क शहर में रहूंगा। हम वहाँ पर युद्ध भूमि पर जा रहे हैं, हमें लड़ना है, विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ना है। तो बहन जरा यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक यहाँ पर सामने आ जाएं, और मैं बच्चों को उठा लूंगा। हाँ हाँ महाशय, धन्यवाद। और अब कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? अब प्रभु की इच्छा हुई तो, जो मैं आशा करता हूँ ऐसा है, एक रविवार को यदि भाई नेविल सभा को ले लें, रविवार एक हफ्ते बाद मैं फिर से वापस आकर और लोहिसाना से जाते हुए या रुककर कलीसिया में एक सभा को ले लूंगा। मैं आप लोगों की दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह को जिस महिला ने मेरे लिए यहाँ पर कैंडी को यानी मिठाई को दिया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं नहीं जानता वो महिला कौन है, किसी ने तो मुझे कैंडी का बक्सा दिया और किसी ने एक तरह का पफ बॉल दिया है। ये सचमुच में ये वास्तव में ही लाजवाब है, मैंने इसे बहुत खाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सोचते हैं कि ये चीजें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, निश्चय ही रखती हैं। जो छोटे छोटे प्रतीक हैं और विभिन्न लोग उनकी अपनी छोटी प्रेम की भेंटों को देते हैं और बिल्ली को बताते हैं और उसे उन चीजों को देते हैं, मुझे चीजें मिलती हैं। देखो, आप नहीं जानते मैं इसकी कितनी सराहना करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं इसे याद रखूंगा। देखो वो इसे कितना और अधिक याद रखता है। तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ किया, तुमने इसे मेरे साथ किया है, समझे। अब दया दिखाई जाएगी, दया दी गई है। तो अब हमारे पास यहाँ पर छोटे कोमल बालक हैं, क्या आप, मैं सोचता हूँ आप वहीं पर खड़े रहें और उसके बाद में गीत को गाएं, उन्हें अंदर लेकर आओ। तो ठीक है भाई लोग, कुछ मिनट के लिए यहाँ पर आ जाएं। ओह, यहाँ पहला बालक है, इसकी दोनों बुरी आंखें मेरी ओर देख रही है, बहुत ही बड़ी प्यारी मुस्कुराहट को देते हुए। छोटी लड़की, इसका क्या, शारोन रोज, यह मेरे लिए एक सर्वोत्तम नाम है मेरी छोटी लड़की के जाने के बाद। इसका नाम इसके जन्म होने से पहले रखा गया। यदि एक छोटी लड़की होगी तो उसका नाम शैरन रोज रखेंगे, लड़की होना था। क्या आप जानते हैं, मैं नहीं जानता कि आप जानते हैं कि नहीं, यदि मेरी पत्नी यहाँ पर खड़ी होती थी तो निश्चय ही वो लगभग चकित हो जाती थी। बिल्कुल इसी तरह के कपड़े मेरी छोटी लड़की ने पहने थे जब उसका समर्पण हुआ था, छोटी शैरन रोज ने। यह एक हो सकता है होने पाए, यह एक जीवित रहे जहाँ परमेश्वर ने मेरी ले ली। आपका अंतिम नाम क्या है श्रीमती, और क्या आप यही इसी शहर से हैं? शिकागो से हैं। भाई और बहन गुडमैन, प्रभु आपको आशीष दे। आप जानते हैं मेरी छोटी शैरन ऐसी ही दिखाई देती थी, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पर हर एक किसी को याद होगा कि वह ऐसी दिखाई देती थी। उसकी ऐसी छोटी भूरी आंखें थी, उसकी माँ के जैसी सचमुच प्यारी छोटी लड़की जिसके काले बाल थे। बस लगभग इस बच्ची की उम्र क्या है, 5 महीने की है। वो 8 महीने की थी जब परमेश्वर ने उसे ऊपर बुला लिया। मैंने उसे कुछ समय के बाद देखा है। आप उस बात को जानते हैं, आपके पास घर पर है जो टेप पर बताया गया था। शारोन रोज, ये शब्द वचन से है। मैंने इसे गुलाब यानी कि रोज, जो शारोन का है, रोज ऑफ शारोन से उल्टा कर दिया है। और उसे एक छोटी बच्ची की उसकी वेदी पर आवश्यकता थी, इसलिए उसने उसे उठा लिया। देखा, और मैं उसके साथ फिर से होऊंगा। होने पाए आपकी छोटी शारोन जिए, ताकि इस जीवन को पूरा करे जो उसे धरती पर जीना है, और होने पाए वो आपके साथ महिमा में होगी, जैसे मैं महसूस करता हूँ कि मेरी शारोन मेरे साथ होगी। तुम कैसी हो? देखा, आप उसके साथ कुछ मित्रता पूर्वक बात करें, इसे देखें, वो बस मुस्कुरा देगी, हमारे सिरों को झुकाएंगे। प्रिय परमेश्वर, जैसे मैंने इस छोटी बहुमूल्य छोटी शारोन को पकड़ा है, आप मेरे हृदय को जानते हैं प्रभु कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो मुझे इसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परमेश्वर धन्य है जो इस छोटी से रत्नों को हमारे हृदय के लिए देता है। इस गुडमैन घराने को आशीष देना। होने पाए माता पिता आदर को पाएं जो वे हुए हैं इस रत्न के घर में आने से। होने पाए ये उनके घर में बने रहे प्रभु। यदि वहाँ पर एक आने वाला कल है तो इसे उस कल के लिए एक आदरणीय महिला बनाना। और अब प्रभु परमेश्वर, आज्ञाकारी होने में आपने जो हमें करने के लिए आज्ञा दी है, आपके अपने उदाहरण के द्वारा आपने अपने हाथों में बच्चों को लिया और उन्हें आशीषित किया और कहा उन बालकों को मेरे पास आने दो। और आपका सेवक होने के नाते उन्होंने बच्चों को मेरे पास लाया है, जैसे आपने कहा तुम सेवक लोग अपने काम को करते रहो। और यहाँ पर आपके सेवक खड़े हैं, भाई नेविल और भाई कैप्स और मैं। और अब प्रभु परमेश्वर, माता और पिता के हाथों से हम आपको छोटी शारोन रोज गुडमैन को देते हैं, जिसे हम सेवा के जीवन के लिए अर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। 5 छोटे बालक इसके अलावा और हैं, कितना सुंदर है। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई गुडमैन, परमेश्वर आपको आशीष दे बहन गुडमैन, और होने पाए परमेश्वर छोटी शारोन को आशीष दे। आप कैसे हैं भाई? अब आइए देखें, मैं कहता हूँ अर्नेट, क्या सही है? विलियम अर्नेट, ये एक प्यारा सा लड़का है। आप जानते हैं कुछ बात हम भी पहले से एक जैसी है, इसमें और मुझ में, हमारे नाम और हमारे काले बालों की कुछ रूप रेखा एक जैसी है। आप देख रहे हैं, ये एक प्यारा लड़का है। जिमी, मैं सोचता हूँ आप इसे यही कहकर पुकारते हैं, जेम्स, ये ठीक है। सोचता हूँ क्या मैं उसे पकड़ सकता हूँ, मैं नहीं जानता। अब जिमी तो ठीक है, हम सच्चे मित्र हैं। क्या तुम ये जानते हो या नहीं जानते, तो ठीक है, आइए अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, आपने इस घराने को, इस छोटे प्यारे अर्नेट के घराने को आशीषित किया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके पिता को, उसकी माता को और उसके प्रियजनों को आशीष देंगे। वे मसीही हैं। किस तरह से उसके पिता ने कितनी कठिनता से लड़ाई को लड़ा है, उस सिगरेट और विभिन्न चीजों से, उनसे उसने एक दिन ये यहोवा यो कहता वाले वचन से पाया, उस एक स्त्री के जैसे जो दृढ़ थी कि वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। हालांकि उसके व्यवसाय ने उसे विफल कर दिया था, सब कुछ विफल होता दिखाई देने लगा, वह फिर भी उसके कुछ पैसों को लिए हुए था और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के लिए रुका रहा, जब तक वो एक सुबह न आ गई, यह घटित हुआ। उसने विश्वास किया था कि ऐसा होगा। अब उसने इस छोटे से लड़के को लाया है, जिससे आपने उसे आशीषित किया है। ओ परमेश्वर, जो उनकी एकता का फल है, मैं इस छोटे जेम्स विलियम अर्नेट को यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। इसे एक लंबा जीवन देना, इसे आने वाले एक कल के सुसमाचार के लिए योग्य मनुष्य बनाना, यदि वहाँ कोई एक कल है तो। और अतः उस राज्य में जो आने वाला है, होने पाए हम सब वहाँ एक साथ रहें। मैं आपके सेवकों ने, हमने इस पर अपने हाथों को रखा है और उसे यीशु मसीह के लिए इस जीवन की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, आमीन। आपको आशीष मिले, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। और दो बालक हैं, ये भी वैसे ही हैं, तो ठीक है, मैं सोचता हूँ आप मुझे उठा सकते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको उठाऊं। ये है अल्फ्रेड, एल और मार्था, इन्हें सभा की ओर मोड़ें। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को लोग देखें। मैं सोचता हूं जब ये छोटे होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं। आइए अब इन पर अपने हाथों को रखें। इसी तरह सर सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके सेवक अपने हाथों को इन बच्चों के ऊपर रखते हैं। यह छोटे भाई और बहन, इस छोटे लड़के के जिसका यहाँ अभी समर्पण हुआ, हम अपने हाथों को उन पर एक समर्पण के लिए रखते हैं। माता और पिता के हाथों से यीशु मसीह की बाहों में एक जीवन की सेवा के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। एल और मार्था बहन, वास्तव में आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। प्रभु आपके साथ हो। यह छोटा बालक सचमुच में एक प्यारा लड़का है। मैं ज्यादातर अपने बालों को ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। देखा, इसका नाम क्या है? हैरल कैथ वॉकर। क्या ही प्यारा लड़का है। मैं सोचता हूँ, मैं बस नहीं जानता, देखो वो मुझे देखता है जैसे शायद मुझे जानता हो। मैं सोचता हूँ क्या मैं इसे उठा सकता हूँ, क्या ये ठीक है कैथ? ओह, ये एक प्यारा सा लड़का है, निश्चय ही। क्या ये प्यारा सा लड़का नहीं है हैरल? हैरल टेरल कैथ वॉकर। सर्व सामर्थी परमेश्वर, माता पिता की बाहों से यीशु मसीह की बाहों में छोटे टेरल कैथ वॉकर को देते हैं। हम अपने हाथों को उस पर रखते हुए सर्व सामर्थ्य को समर्पित करते हैं। जैसे कि माता और पिता की तीव्र इच्छा है कि बालक परमेश्वर के उपदेश में बढ़े, यदि कोई आने वाला एक कल है इसे इस समर्पण के द्वारा योग्य सेवक बनाना, क्योंकि हम आपके सेवक हमारे हाथों को इस बालक पर रखते हैं और इसे प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। आमीन। आपको आशीष दे भाई वॉकर। क्या ये बहन वॉकर हैं? ये सचमुच में अच्छा है। आपका लड़का प्यारा है और होने पाए परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ठीक है श्रीमान। जी हाँ, यह छोटी लड़की हमारी भाई ग्रिसले की ग्रम्बी, मैंने इन नामों को मिला दिया है। हमारे एक भाई ग्रिसले भी है, मैं उनको सोच रहा था। भाई ग्रम्बी ने इस छोटी लड़की को लाया था और जब इस छोटी लड़की ने जन्म लिया था उसके चेहरे पर एक बड़ी गांठ थी और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वो गांठ निकल गई थी। और अब वे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, क्योंकि क्या इसके माता पिता मसीह हैं? वे मसीह नहीं हैं और वे डरते हैं कि एक दुष्ट आत्मा उस छोटे बालक को पकड़ रही है, वे इसे निकालना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस छोटे बालक पर जैसे ये वेदी के सहारे है आपने जहां अपने अनुग्रह को दिखाया है, आपने उस ट्यूमर को जो उसके मुंह पर था उसे निकाला है। अब एक दुष्ट आत्मा बालक के जीवन को लेने की कोशिश कर रही है, कोई संदेह नहीं, लेकिन आप इस लड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा करने की योजना कर रहे हैं और शैतान इस योजना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम में शैतान को आज्ञा देते हैं कि अपने हाथों को हटा ले और अपने आप को इस बालक से दूर रखे। जब हम इस बच्ची को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आमीन। भाई ग्रम्बी, आप विश्वास करें, यह बालक विश्वास करने के लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? वो अद्भुत है। अब हर एक जन, मैं आज रात वादा करता हूँ कि 8:30 बजे निकल जाऊँगा, तो मुझे आधा घंटा मिलता है। मैं अभी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, हो सकता है मैं बाद में इससे कुछ और ज्यादा समय ले लूँ, लेकिन आइए अब हम यह आज सुबह मैं भाई डोज को देखकर खुश हूँ। मैं नहीं जानता वे दूसरे कहाँ पर चले गए, लेकिन आज सुबह उनके साथ हमेशा ही एक और व्यक्ति रहता है। वहाँ एक व्यक्ति ठीक उसके पास ही बैठा था। मैंने कहा, भाई डोज कौन से हैं? मैंने आगे और पीछे देखा और मैं उनका नाम लेने जा रहा था और मैं संदेश में इतना लीन हो गया था। आप जानते हैं भाई डोज, आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आप हमेशा ही से थे। मैं उन्हें इस स्थिति में देखकर बहुत ही खुश हूँ। अभी हाल ही में मुझे वहाँ टूसन से फोन आया, उसके लिए मैं फिर से प्रार्थना करूँ, उन्हें कुछ तो और ही हुआ था। भाई डोज, मैं सोचता हूँ उनकी उम्र 90 या 91 वर्ष है, 90 वर्ष के हैं, मैं सोचता हूँ या 91 वर्ष के। और आपका शरीर थक जाता है, लेकिन बहुत से धर्म के कारण सताए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सब से छुड़ाएगा। और कभी कभी जब शरीर एक ऐसे स्थान पर आ जाता है जहां पर कुल मिलाकर असंतुलित हो जाता है, मैं जानता हूं वो एक हाथों को पकड़े हुए होता है। तू एक मिट्टी के डेरे में हो, परमेश्वर ने अंतिम दिनों में फिर से खड़ा करने की प्रतिज्ञा की है और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। मुझे याद है भाई डोच, जब यहाँ इस तालाब में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने को आए और उनके पास बपतिस्मे के लिए कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जाना चाहते थे और परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए अनुग्रहकारी रहा था। जरा सोचें, उसे 20 वर्षों से ऊपर हो गए, परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। क्या होता यदि अनुग्रह नहीं होता था तो? और अब भी एक दिन वो पूरी तरह से दिल का दौरा पड़ने से पड़े हुए थे और देखो दिल का दौरा उससे बढ़कर था, और यदि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चंगा नहीं किया होता और वहाँ से तुरंत यहाँ नहीं लाया होता था तो? और मैं सोचता हूँ जब उनका डॉक्टर मर गया था, क्या यह सही है? जी हाँ, यहाँ तक कि वो डॉक्टर वो यहूदी डॉक्टर था जो उसका इलाज कर रहा था और इत्यादि, और उसने उस बड़े से कमरे में खड़े होकर उसके बारे में मुझसे बात की थी, वो उसके लिए सब कुछ कर चुका था, समझे? ओह कितना अधिक आपका प्रेम कितना गहरा है, ओ प्रभु आपका प्रेम कितना महान है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रुमाल रखे हैं जिस पर हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं विश्वास पर थोड़ा कुछ बोलने जा रहा हूँ और फिर हम देखेंगे परमेश्वर क्या अगुवाई करता है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो ठीक है, आइए हम इसे उस पर छोड़ देते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है। ओह एक साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे रहना। मैं आज वहाँ ब्लू बोर से आने के बाद अपने कुछ मित्रों से बातें कर रहा था और मैंने कहा क्या आप सभा के लिए रुकेंगे? जी हाँ, मैंने कहा आपको निश्चय ही 12 या 1 बजे तक गाड़ी चलाना होगा। वे उनके घर सुबह लगभग 6 बजे तक पहुंचने की अपेक्षा कर रहे हैं, रास्ता लंबा है। याद रखना वे मनुष्य ही हैं और वे मेरे जैसे ही थक जाते हैं, वे बहुत दूर टेनेंसी और यहाँ वहाँ जाते हैं। प्रभु उन्हें आशीष दे। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, मैं बस हर समय इसे ऊपर लाता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सी बार नहीं मिल पाता हूँ। मैं आपसे किसी न किसी तरह से बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन यदि मैं आपसे बताने के लिए नहीं मिल पाता हूँ जो कुछ मैं यहाँ पर आपके बारे में सोचता हूँ, समझे? मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, उन भाइयों में से कुछ उनकी कलीसियाओं को बर्खास्त करके यहाँ पर आए हैं। भाई जैक्सन आज सुबह यहाँ पर हैं, उन्होंने किसी एक भाई के द्वारा बोले गए अन्य भाषा का सुंदर अनुवाद किया है और प्रमाणित करते हुए और पक्का करते हुए कि ये परमेश्वर ही था। क्या आपने ध्यान दिया, उसने ये कभी नहीं कहा ये गलत नहीं था, ये ऐसा नहीं था, उसने केवल इसे सुनने की चेतावनी दी, समझे? समझे? तो भाई जूनियर आज सुबह यहाँ पर थे, वे अपनी कलीसिया को बर्खास्त करके आए थे, और मैं समझ सकता हूँ वहाँ दूसरे कलीसिया के भाई भी हैं जो यहाँ सेलर वर्क से हैं, और भाई रुडेल वे आज सुबह यहाँ पर थे, मैं नहीं जानता वे आज रात यहाँ पर हैं कि नहीं। अच्छी बात है वो आज रात फिर से यहाँ पर हैं, तो ठीक है, प्रभु आपको भाई आशीष दे, भाई रुडेल और आप। मैं बस इसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, बस मैं जो सोच सकता हूँ, लेकिन हो सकता है तो जब हम उस ओर मिलेंगे मैं आप प्रत्येक के साथ 10,000 वर्षों तक बैठना चाहता हूँ, आप देखना, तब देखो हम ऐसी बात करते रहेंगे। और जबकि फसल पक गई है और मजदूर बहुत ही थोड़े हैं, आइए ठीक इसके अंदर खुदाई करें, और हो सकता है संयोग से कोई पापी वहाँ पर बैठा हुआ हो, वहाँ हो सकता है कोई तो एक हो जो हो सकता है सारी कार्य प्रणाली को बदल दे। और यदि आज की सुबह वो समय नहीं था तो हो सकता है आज रात किताब बंद हो जाए। याद रखना वहाँ एक भी और नहीं होगा जो अंदर आएगा जब वे नाम छुड़ाए जाते हैं। वे सब जो कभी छुड़ाए जाने हैं, परमेश्वर ने उनके नामों को मेमने की जीवन की किताब में डाला इससे पहले कि संसार की रचना हो। कितने लोग यह जानते हैं, यह वचन है। और मसीही विरोधी अंत के दिनों में वे इतने नजदीक होंगे जैसे कि यह वास्तविक बातें हों, सच्ची कलीसिया हों, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे यहूदा था, इतना तक कि ये चुने हुए को भी भरमा देंगे यदि यह संभव होता था तो। क्या यह सही है? लेकिन कोई भी मनुष्य यीशु के पास नहीं आ सकता है जब तक परमेश्वर उसे नहीं भेजता है, और उन सबको जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है उसके पास आएंगे। और जब वह किताब को लेता है वो अंतिम नाम, देखो वे सारे जो लूथरन युग में थे उसने उनको बाहर खींचा, वे सारे जो वेस्ली के युग में थे उसने उनको बाहर खींचा, वे सारे जो विभिन्न युगों में थे और पेंटिकॉस्टल युग में थे उसने उनको बाहर खींचा, वे यहाँ पर हैं, उनका न्याय नहीं होना है, उनका रैप्चर हो रहा है। और फिर जब वो अंतिम नाम बाहर आता है जिसे मेमने के जीवन के किताब में डाला गया था, जो जगत के बुनियाद डालने से पहले घात हुआ। जब वो अंतिम नाम छुड़ाया गया था, तब उसका काम समाप्त होता है। वह उन्हें दावा करने के लिए आगे आता है जिसे वो छुड़ा चुका है। यह हमारे हृदय को संचरण कर देता है। लेकिन यदि यह 1000 वर्षों के पश्चात होता, वहाँ एक भी नाम छुड़ाया हुआ नहीं होता और एक भी छुड़ाया नहीं जा सकता है, जब तक वे मेमने के जीवन की किताब में जगत के बुनियाद डालने से पहले नहीं डाले गए थे। वे कौन है मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, बस केवल परमेश्वर ही जानता है। मैं भरोसा करता हूँ हम में से हर एक जन, हमारे नाम उस किताब पर थे। यदि मेरा नाम वहाँ पर था, मैं निश्चय ही वहाँ पर रहूँगा। यदि यह नहीं था, तो मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। ऐसा ही है। देखो, यह तो परमेश्वर पर ही है। यह उसके चाहने से नहीं, उसके दौड़ने से नहीं, लेकिन परमेश्वर जिस पर अपनी दया को दिखाता है। समझे? अब आइए, अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे पूरे आदर और ईमानदारी के साथ। और मैं सोचता हूँ कि यही वो एक बात है जिसे हमें करना ही है। देखो, आइए इन अत्यधिक बेहुदा बातों को बंद करें, आदर करें और ईमानदार रहें। मैंने देखा है वो अंगीकार करना, कभी कभी जब वे टेलीविजन पर, जब उनके पास बिली ग्राम की सभा थी, बिली ग्राम के विरोध में कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ कैलिफोर्निया में उस मनुष्य ने उस पिछली रात्रि को बहुत ही अच्छा प्रचार किया। उसने वहाँ पर उसी बात को प्रचार किया जिसे मैंने बहुत समय पहले यहाँ पर प्रचार किया था, दानियल पर। तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। कितने लोगों ने इसे देखा? मैं सोचता हूँ आप में से बहुत लोगों ने। देखो, क्या आपने उन लोगों को ध्यान दिया जो उस कलिसिया के गलियारे में बीच के मार्ग में चलते हुए आते हैं, चुंगम चबाते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे के साथ खेलते हुए आते हैं? यह मृत्यु और जीवन के बीच में चलना नहीं है। इस पाप और पश्चाताप की कोई माफी नहीं है। बस यही बात को बिली ने कहा, एक निर्णय को लेना और एक ठंडी सूखी हुई आंखें की अनुभूति, निर्णय लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पाप के लिए क्षमा को मांगना होगा और उससे मुड़ना होगा। और बिली ने खुद कहा, इससे यह साबित होता है कि 30,000 में से आप एक वर्ष के बाद 30 को भी नहीं पाते हैं। एक दिन उसने कहा, न्यूयॉर्क के साथ क्या समस्या है? मैंने वहाँ पर बहुत बड़ी सभा की थी और क्या हुआ? पाप पहले से और भी बदतर होता गया था और यह निरंतर बदतर होता चला जाएगा। वहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय पश्चाताप नहीं है। राष्ट्र जा चुका है, केवल आप व्यक्तिगत रूप से हैं। और बहुत ही जल्द यह पूरा हो जाएगा यदि यह पहले से नहीं है तो। अब इस बात को समझ लेना, आप जो जवान बच्चे हैं, देखो यह कितना समय है भाई ब्रैनम। यह भाई ब्रैनम नहीं है जो मैंने कहा है वह गलत है या सही है। पाप और बदतर होता चला जाएगा, इतना तक कि एक दिन आकाश को आग पकड़ लेगी, वह धरती पर गिर पड़ेगी और वो धरती तपती ज्वाला के साथ जल जाएगी। लेकिन वे छुड़ाए हुए उस समय यहाँ पर नहीं होंगे, वे चले जाएंगे। अब मरकुस की किताब का 11वां अध्याय और पहला योन्ना पद 4 उसका 4 और मती 28:20 मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। अब पहले मैं संत मरकुस 11 अध्याय पढ़ना चाहता हूँ और पद 12 से 24 तक। ध्यान से सुनना जब हम इसे पढ़ते हैं। और अब यह एक छोटी सी एक गवाही के लिए बुनियाद है और कुछ शब्दों की उत्तेजना है, और फिर हम देखेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करने को रखा है। हर एक जन बस बैठा रहे और प्रार्थना में रहे जब हम पढ़ते हैं मरकुस 11 उसका 12। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक बड़ा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो व्यापार कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियों को उलट दिया और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर में से बाहर जाया करता था। फिर भोर को, अब यह दूसरा दिन था, जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। 24 घंटों के अंदर चमत्कार दिखाई दिया। जब उसके उस पेड़ से कहने के बाद कोई मनुष्य नहीं खाएगा, उस समय ऐसा दिखा कुछ भी घटित नहीं हुआ है, लेकिन अगले दिन पर यह सूख गया था। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कुछ बात है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यह उस बात पर निर्भर करता है। अब मैं पहला योहन्ना उसका 4:4 पढ़ना चाहता हूँ। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि ध्यान से सुनना, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, मसीह विरोधी के बारे में बोलते हुए, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। दो सर्वनाम है, देखो वो ही व्यक्तिगत सर्वनाम, वो ही जो संसार में है, और वो ही जो तुम में है, वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। अब संत मत्ती का 28वां अध्याय और 20वां पद, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अब आज रात उसमें से एक लेख को लेते हुए मैं इस लेख को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो जो तुम में है, और उस पर मैं विश्वास को बनाना चाहूँगा, निश्चय ही एक प्रार्थना की सभा के लिए। और बस जल्दी करते हुए, और ऐसा है जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो घटित हुई हैं, और मैं अक्सर रुका रहता हूं जब तक मैं यहां कलीसिया में नहीं आता उन घटनाओं को कहने के लिए। और फिर यही दूसरे लोग सुनना चाहते हैं, वे इसे टेप के जरिए से सुन सकते हैं, लेकिन मैं रुका हूं यहां आने तक। और ऐसा है किसी भी तरह, जो घटना मैं ठीक आपको अभी बताने ही जा रहा हूं, यहां पर बहुत से मनुष्य हैं जो इसके गवाह हैं, जो मसीह भाई लोग हैं। उसमें से एक यहां पर उपस्थित हैं, जो भाई बेकर्स वुड हैं, और दूसरे भाई जो यहां पर उपस्थित हैं, भाई डेविड वुड हैं, और एक और भाई जो यहां उपस्थित थे वो भाई इवांस थे, और उनके बेटे रोनाल्ड एक और उपस्थित थे, हमारे बहुत अच्छे डीकन भाई विलर, और एक उपस्थित थे और वो है भाई मेन। क्या भाई मेन यहाँ पर हैं, जो न्यू एल्बनी से हैं, एक मेथोडिस्ट प्रचारक जिसे मैंने हाल ही में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, वो भी वहाँ पर थे जब यह घटित हुआ था। यह कुछ समय से होता आ रहा था, कुछ वर्षों से मेरे छाती में एक गहरा बोझ था जो कि मुझे मेरे हृदय में था। इससे मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैंने कुछ तो गलत किया था, और मैं अपने जीवन को जांचने लगा और जांचता रहा यह देखने के लिए कि क्या गलत हुआ है। प्रभु, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझ पर आप केवल प्रकट करें कि क्या गलत हुआ है, और मैं आगे बढ़कर और इसे ठीक कर लूंगा। लेकिन कुछ भी मुझ पर प्रकट नहीं हुआ। मैंने कहा, क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, क्या मैंने कुछ अधूरे में छोड़ दिया है, क्या मैंने कुछ अधिक ही पढ़ता हूँ, क्या मैं अधिक प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं पढ़ता रहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, और मैंने कहा मुझ पर प्रकट करें, क्या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, यदि मैंने पहुंचाया है तो मैं इसे सही कर लूंगा, केवल आप मुझे दिखाएं, मैं इस बोझ को नहीं चाहता हूं। और पिछले 5 वर्षों से जब से मैं इस कार्य पर आया हूं, यह मेरे हृदय में एक बोझ लटक रहा था। मैं पहाड़ों पर गया हूं, मैं समुद्र के किनारों पर गया हूं, मैं हर कहीं पर गया और प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता रहा, लेकिन यह बोझ नहीं गया। और मैंने सब कुछ सोचा, यदि मैंने कुछ किया है तो, लेकिन यह फिर भी था, यह नहीं गया। मुझे बस ऐसा लगा जैसे मैं जकड़ा हुआ था। और यह बहुत ही अजीब था कि यह तभी हटने लगा जब यह संदेश आया। आज सुबह का जो संदेश है, देखना अब क्या यह परमेश्वर था जो इसके लिए रोके हुए था, मैं नहीं जानता। देखो, ये सारी बातें मेरे मन में थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मनुष्य के हृदय में क्या होता होगा जब ये आपके अंदर बढ़ने लगता है। देखो, इसे सोचते हुए कि क्या बात घटित होने जा रही है। और मैं समझता हूँ लोगों को बताना, जानते हुए कि कुछ लोगों का गलत दृष्टिकोण होगा और कुछ लोग इसे इस तरह से लेंगे और उस तरह से लेंगे। आप जानते हैं ये किस तरह से होता है, और कुछ लोग विश्वास करेंगे और कुछ विश्वास नहीं करेंगे। और लेकिन ये बोझ आपके पास है जो आप लिए हुए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं बिना दुख पहुंचाए? आप ये कैसे कह सकते हैं जिससे इसका प्रभाव होगा? आप इसे कैसे कह सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि आप उन्हें श्रेणीबंद नहीं कर सकते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं? आप कैसे सख्त और कड़क हो सकते हैं और फिर भी प्रेमी हो? और ओह, आप इस बात को कैसे रखेंगे? और फिर मैं दुखित होता हूँ यदि मैं इस बात को नहीं रखता हूँ तो। देखा, और वहाँ पर आप हैं, समझे? कोई आश्चर्य नहीं, ये आपको निराश करता है और तोड़ देता है। मैं एरिजोना से यहाँ पर कुछ भाइयों के झुंड से मिलने के लिए आया जो मेरे साथ हर वर्ष शिकार करने के लिए कोलोराडो में जाते हैं। अब आप कुछ लोग सोचते हैं, तुम शिकार करने के लिए क्यों जाते हो, आपको क्या दिलचस्पी है? देखिए, यहाँ इस स्थान पर आप भरते जाते हैं और मैं खाली होते जाता हूँ। वहाँ पर मैं भरता हूँ इसलिए कि मैं खाली हो सकूँ, समझे? अब मैं यहाँ पर केवल शिकार करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ हर एक जन जो मेरे साथ जाते हैं वे जानते हैं कि मैं सैकड़ों बार शिकार को छोड़कर निकल जाता हूँ, और मैं यहाँ तक कभी उन्हें छूता भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अब यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने क्रिश्चियन बिजनेसमैन के लोगों के लिए शिकार करना आरंभ किया। जब वो वहाँ ऊपर जाकर कहते, बिली मेरे लिए एक बैल लेकर आओ, मेरे लिए गाय लेकर आओ, मेरे लिए 12 सिंगा लेकर आओ और मेरे लिए ये या वो इत्यादि लेकर आओ, मैं वहाँ पर जाता और बस दाएं से और बाएं से जाकर शिकार को करता। प्रभु ने मेरी सहायता की, इसलिए मैं देख सका और शिकार को कर सका और बहुत ही अच्छी तरह से शिकार करके और उन्हें मार देता। और वे व्यवसायी लोग बस यहाँ वहाँ ऐसे ही बैठे रहते और अपने व्यवसाय के बारे में बातें करते रहते थे। तब प्रभु ने मुझसे कहा, ऐसा अब और मत करना, और मैंने इसके बारे में बहुत ही खराब अनुभव किया, इसलिए मैंने उससे प्रतिज्ञा की, इसके बाद से मैं इसे नहीं करूँगा। नहीं, मैंने कहा, यदि कोई आपात स्थिति है, किसी को उसकी आवश्यकता होती है तो मैं इसे करूँगा, लेकिन यदि इन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे नहीं करूँगा। बस उन लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है उस गाय के मांस और वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो मैं भला इसे क्यों करूँ? उन जानवरों को जीने दो यदि आपको इसका उपयोग नहीं है तो। इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा, और कोई भी व्यक्ति जो कभी शिकार के लिए मेरे साथ जाता है वह जानता है कि मैं किसी के साथ शिकार नहीं करता हूं। मैं अपने से बाहर निकल जाता हूं ताकि अकेला रहूं, और उनके साथ जाता हूं ताकि रात को उनके साथ संगति कर सकूं, यहां वहां जाकर प्रार्थना करूं और इत्यादि। क्योंकि वहां पर बहुत से दूसरे सेवक भी थे जो इस वर्ष वहां ऊपर उन पहाड़ों पर थे, हमारे भाई पाल्मर है। मैं सोचता हूं मैंने उन्हें थोड़े समय पहले ही यहीं कहीं देखा था, यहां पर हैं वे, वहां बैठे हुए हैं भाई पाल्मर। और एक भाई बॉब लेबर्ट वे यहाँ पर सुबह को थे, मैंने उन्हें कहीं तो चिल्लाते हुए सुना था। मैं सोचता हूँ कि वे अब भी यहीं पर हैं। और फिर वहाँ एक भाई थे, वे मार्टिन के दोनों लड़के हैं। मैं सोचता हूँ वे यहाँ पर हैं और वे मार्टिन के लड़के हैं। भाई मार्टिन, आपने मुझे एक दिन फोन किया, ये अच्छी बात थी, वो लड़का चंगा हो गया था जो सेवक भाई है। क्या आप यहाँ पर हैं जिसके लिए मैंने एक दिन फोन पर प्रार्थना की थी? मैं उसका नाम भूल गया, जो वहाँ अरकनास से है। उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया, वो व्यक्ति एक तरफ से पूरा सूज गया था और उसे बहुत ही तेज बुखार था, वह मर रहा था। उसी व्यक्ति को बाहर बुलाया गया था वहाँ लिटिल रॉक पर या उस हॉट स्प्रिंग की मीटिंग में जो सभा में बैठा हुआ था, और यह एक अच्छा भला सा दिखने वाला व्यक्ति है। यदि वो यहाँ पर है तो मैं सोचता हूँ वह अब तक खड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। ब्लेयर, भाई ब्लेयर, कोई तो ठीक है। अब वे लिटिल रॉक सभा में बैठे हुए थे, कितने लोग वहाँ पर थे, मेरा मतलब वहाँ हॉट स्प्रिंग पर कितने लोग सभा में थे, और पवित्र आत्मा ने उस जवान व्यक्ति को बुलाया और उसे बताया कि शैतान उससे बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा वो इनकार करे, यह कहूँ कि मैं एक झूठा नबी हूँ, और उस व्यक्ति ने इसकी गवाही दी, यह सच्चाई है। क्या आप देख रहे हैं कि शैतान क्या कर रहा था? वो व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए विश्वास नहीं करता है, लेकिन शैतान जानता था कि उसे यह बीमारी लगने जा रही थी और वो ठीक उसे वहाँ पर मार सकता था, समझे? इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि मेरा इनकार करे, और पवित्र आत्मा ने अनुग्रह में से होते हुए उसे बुलाया और कहा ऐसा मत करना, उस व्यक्ति को अजनबी होने के नाते उसे बताया ऐसा मत करना। और एक रात को उसकी पत्नी ने मुझे फोन किया और कहा भाई ब्रैनम, मैं सोचती हूँ कि वे मर रहे हैं, कहा वे पूरी तरह से सूज गए हैं और उनका बुखार लगभग उनके सर पर चढ़ गया है, और कहा अंतिम बात जो उसने कही, भाई ब्रैनम को फोन करो। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पर्स में रुमाल है? नहीं, मैं टूसान में था और वह अरकनास में थी, और मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ है, उसने कहा मैं सोचता हूँ उसका दुपट्टा, और मैंने कहा अब तुम अपने हाथों को दुपट्टे पर रखो और दूसरे हाथ से फोन को पकड़े रहो, और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा कि उस पर तेरी दया हो परमेश्वर, और उस शत्रु का इनकार करे, और उसने जाकर और उस दुपट्टे को उस व्यक्ति पर रख दिया, और अगली सुबह को उसने मुझे फोन किया। अब लगभग 24 घंटों में या उससे भी कम समय में हमारे बहुमूल्य भाई, मैंने उन्हें आज रात को अब तक नहीं देखा है, जो भाई रॉय रॉबर्सन है। एक बार आप जानते हैं भाई रॉय को, एक तरह के एक सेना में काम करने वाले व्यक्ति थे। यदि भाई यहाँ पर हैं तो मैं आशा करता हूँ वे समझते होंगे, क्योंकि मैं यह निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वे सब बातों में सख्त होते हैं। वह सेना में एक ऊंचे पद पर थे, और आप जानते हैं आपको किस तरह का होना होता है उन आदमियों को संभालने के लिए जैसे वे सेना में करते हैं। तो ठीक है, आत्मिक बातें किसी और के लिए होंगी, उसके लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचाए रखा। वह मर गए होते थे, उन्होंने उसे मरने के लिए बहुत समय तक बाहर छोड़ दिया था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, तब से लेकर वे अनुकरण करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन सारी आत्मिक बातों को और उन दर्शनों के बारे में नहीं जाना। और यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, बहुत से लोग उस दर्शन को जानते हैं जिसे भाई रॉय को दिया गया। इससे पहले मैं वहाँ पर जाऊँ उसके बारे में कि वे दर्शन में मुझे देख रहे थे, मैं वहाँ पर पहाड़ पर उस प्रकाश में खड़ा हुआ और वो आवाज मुझ में से आ रही थी जिसने भाई रॉय के सारे संदेह को निकाल दिया। और एक रात को वो एक ऐसे स्थान पर घायल हो गए थे इतना तक कि वो पूरी तरह से बीमार हो गए थे, और उन्हें बहुत तेज बुखार इत्यादि हो गया, और डॉक्टर ने उसे दवाई और आदि सब कुछ किया, और फिर भी वे ठीक नहीं हुए, और वो यहाँ तक ऐसी स्थिति में आ गए वो अपने आप को हिला भी नहीं सकते थे, उसके पैर और बाकी चीजें जैसे लकवा हो गया हो, और उस बेचारे छोटे भाई को गोलियों के टुकड़े लगे थे एक जर्मन 88 नामक बंदूक से, जर्मन 88, और यह बस ऐसा था, मैं सोचता हूँ उनका सारा काफिला मारा गया और वो बच गए और वे वहाँ घायल हो गए थे। और आप जानते हैं कि क्या घटित हुआ था? मैंने उनकी भली पत्नी बहन रॉबिन्सन से कहा, उसने कहा, मैंने कहा क्या तुम्हारे पास वहाँ पर कुछ है, उसने कहा मेरे पास एक रुमाल है जिस पर आपने एक समय प्रार्थना की थी, जाकर उसे ले लो, और मैं तूफान में था, और उसने अपने हाथों को उस पर रखा और प्रार्थना की और डांटा और कहा बहन रॉबिन्सन ये चला जाएगा। तभी किसी ने तो मुझसे कहा यह निकलने जा रहा है, इसे कह दो, और आधे घंटे के अंदर ही बुखार चला गया था। वो रसोई घर में था, कुछ तो खाने के लिए तैयार कर रहा था। देखा देखा, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने भरोसे को कभी मत खोना, शैतान को कुछ भी मेरे लिए गलत बोलने को मत लगाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ उस भरोसे को बनाए रखना, कारण यदि आप नहीं रखते हैं ये ऐसा होगा ही नहीं। मेरी ओर मत देखना, मैं एक मनुष्य के नाते मैं एक मनुष्य हूँ, मैं गलतियों से भरा हुआ हूँ, लेकिन उसे देखो जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यही है वो, वही वो एक है। जब हम कोलोराडो में थे, देखो जब हम वहाँ ऊपर थे, हम वापस चले गए और मौसम बहुत ही सूखा था, शिकार करना दुर्लभ था। भाई व्हीलर, जिसे प्रभु ने आशीषित किया और एक अच्छे शिकार को दिया, और हम इसके लिए बहुत ही खुश थे। यह पहली बार हुआ था कि उन्होंने कभी जंगल में शिकार खेला था, और प्रभु ने उसे आशीषित किया। और फिर मैंने एक बड़े शिकार को निशाना लगाया जिसके लिए मैं 20 वर्षों से देखते आ रहा था, और मैं उसे देखते आ रहा था बाई बैंक, और मैं बहुत समय से उसके पीछे थे। और जब मैंने इसे किया, उस गर्म देश में बंदूक से शिकार करते आ रहा था, और इस बंदूक को ठंडे स्थान पर लाना, इसकी नली फूल गई थी, हालांकि कांच मुड़ गया था, और इससे काफी इंच की दूरी से गोली निकली और उस जानवर को जाकर लग गई जो पेड़ों के बीच में खड़ा हुआ था, जहां इसे नहीं लगना चाहिए था उससे भी नीचे, जहां कुछ ही क्षण में मानवता में वो जानवर मारा जाएगा। लेकिन इसने इसे बहुत ही ऊपर मारा, वो कूदा और इस तरह से गिर पड़ा। और बिली मेरे साथ था और उसने कहा उससे लग गया, और मैंने भी सोचा इससे लग गया, लेकिन जब हम वहाँ पर गए ये ऐसा नहीं था। उसने कहा आपने पेड़ को मारा है, मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, वहाँ पेड़ पर कोई भी निशान नहीं था, और फिर मैंने जाकर इसे ढूंढने की कोशिश की, और फिर वहाँ पर एक चेतावनी का चिन्ह आया। वहाँ पर तकरीबन 100 पुरुष ठीक हमारे ऊपर थे, और भाई पाल्मर और मैं इसके गवाह हैं, और भाई इवांस ये सही है वो वहाँ पर थे, भाई वेल्श इवांस और उनके बेटे रॉनी, मैं सोचता हूँ मैंने कुछ समय पहले उन्हें फोन किया था। और बहुत ढेर सारे पुरुष हमसे ऊपर चले गए, और जिसे वे घुड़सवार चरवाहे कहते हैं, जिनका शिविर वहाँ ऊपर था जहाँ पर वे घुड़सवार चरवाहे रहते हैं और घुड़सवारी करते हैं और उन गायों को अलग करते हैं। वे अक्सर खुद शिविर में रहते हैं और वे उन पशुओं के झुंड के जानवरों को अलग अलग करते हैं। और तो फिर वहाँ पर लगभग 100 पुरुष थे, लेकिन हर एक जन उस देश में जानता है जब एक पूर्व अनुमान की सीटी को बजाया जाता है, अच्छा होगा तुम ठीक वहाँ से अब दूर चले जाओ। इसलिए भाई पाल्मर और वे बहुत ही जल्द निकल गए, क्योंकि उनकी कार में केवल 3 गति के प्रसार थे और उन्हें वहाँ से बाहर निकलना था मौसम की वजह से। यहाँ पर होते हैं तो आपको और शायद हफ्तों तक रुकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा वहाँ पर एक तूफान की चेतावनी हो रही है, मौसम का पूरा अनुमान और समाचार और रेडियो पर भर भर कर लोग व्यावहारिक रूप से सब चीजें वहाँ ऊपर हर कहीं से निकलने लगे। उन्हें निकलना था ठीक तभी, क्योंकि वे जान गए थे कि वहाँ से निकलना है। लेकिन मेरे भाइयों के पास 2 हिरण के लाइसेंस थे और उन्होंने नहीं जाना चाहा, इसलिए मैंने कहा तो ठीक है हम रुकेंगे, लेकिन मुझे आने वाली सभाओं में जाना है जो लगभग आने वाले 6 दिनों में है, और मुझे वापस तूसान की ओर जाना था। तो मेरी छोटी पत्नी, हमें विवाह करके 22 वर्ष बीत चुके हैं, और 20 वर्षों से हमारी विवाह की सालगिरह पर मैं हमेशा ही उस समय पर वहाँ पर होता हूँ या होने पर वहाँ पहुँच जाता हूँ, और मेरे पास एक छोटा सा स्थान है, मैं हमेशा ही जाकर और प्रार्थना करता हूँ, और यह ऐसा स्थान दिखता है जहाँ पर मेरी पत्नी को लेकर जाऊँ। आप जानते हैं मैंने इन छोटी चीजों को बनाया है, आप जानते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे मैं शिकार के दौरे में या हनीमून में ले जाऊँ, इसलिए मैं मेरी पत्नी को शिकार के दौरे पर हनीमून के लिए ले जाता था। तो हम न्यूयॉर्क में थे और मुझे याद है मैंने उसकी वहाँ लकड़ी के लट्टे पर और आदि पर एक स्थान पर बैठाने के लिए सहायता की थी। वहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्थान है, मैं हमेशा ही पत्नी के बारे में सोचता हूँ जब मैं वहाँ हमारी विवाह की सालगिरह पर जाता हूँ 23 अक्टूबर तारीख को, जब वहाँ पर मौसम खुल जाता है, और 20 वर्ष लेकर उस समय में मैं घर पर नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा ही वहाँ ऊपर जाता रहता हूँ। तो उस दिन हमारी विवाह की सालगिरह थी, और भाई मेन, मैंने कहा अब यदि आप भाई लोग, तो मैंने उस सुबह आग को सेकते हुए कहा अब यदि, मेरा मतलब उस रात को, यदि आप सब अभी रुकना चाहते हैं तो याद रखना हो सकता है हम यहाँ पर एक महीने के लिए रुके रहेंगे, क्योंकि मैंने 20 फुट की बर्फ को थोड़े ही समय पर सारी रात में गिरते हुए देखा है। आप बस वहाँ पर बाहर आए और आपको थोड़ा सूखा और अच्छा लगेगा, और अगले ही सुबह वो बर्फ इतनी ऊंचाई पर आ जाती है, इतनी ऊपर कि हो सकता है आपके तंबू से भी ऊपर हो। तो फिर मैंने कहा और आपको वहीं पर रुके रहना है जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती है, इसलिए आप लगभग 15 या 20 मील उस जंगल में पीछे हो। इसलिए मैंने कहा और यदि आपातकालीन होती है निश्चय ही वे हेलीकॉप्टरों को भेजते हैं और आपको वहाँ से निकालते हैं, लेकिन अक्सर वे बस कोई भी अत्यधिक ठंड में नहीं निकलता है, उनको वहाँ पर बस रुके रहना होता है। तो हर कोई भागने लगता है जितना जल्दी हो सके, जैसे ही वे प्रसार को सुनते हैं, मेरा मतलब मौसम के पूर्वानुमान को सुनते हैं, इसलिए हम वहाँ पर पीछे हैं। और मैंने कहा अब आपको अपने मन को तैयार करना है, यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके साथ शिकार करूँगा, और मैं अपनी पत्नी को फोन करके कहूँगा विवाह के सालगिरह की बधाई हो। लेकिन मैंने कहा तब उस पर ऐसा भी है कि हमें कुछ खाने पीने का सामान लाना होगा, क्योंकि शायद हो सकता है हमें यहाँ पर रुकना पड़े। और मैं अब बहुत समय तक मालपुआ और उन पेक केक को और नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए कि तब मैं कनाडा में उससे लगभग 21 दिनों से खा रहा था, निश्चय ही मैं उन चीजों से उब गया था, और इसलिए तब मैं कुछ रोटी को चाहता था। तो उन्होंने तभी कहा कि वे रुकना चाहते थे, तो वहाँ पर करने के लिए कुछ भी और नहीं था रुकने के लिए, लेकिन भाई मैन और मैं वहाँ से निकल गए और वहाँ नीचे जाकर कुछ खाने पीने की चीजों को लिया, और मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और मुझे कुछ उत्तर न मिला, कोई भी उत्तर देने को नहीं था, और मैं लगभग 1 घंटे तक रुका रहा था जब तक कि दुकान पर खाने पीने का सामान नहीं ले लिया। मैंने वापस जाकर और फोन किया, उत्तर नहीं मिला, और मुझे बहन इवांस को फोन करना था। मैं सोचता हूँ बहन इवांस यहाँ पर हैं, और मैंने बताया जी हाँ भाई इवांस, बहन इवांस यहाँ पर हैं। तो मैंने बहन इवांस को भाई इवांस के लिए फोन किया और उसे सब बताया। उसने कहा मैं बहन ब्रैनम को फोन करके और उसे बताऊंगी आपको विवाह की सालगिरह की शुभकामनाएं। निश्चय आप जानते हैं तो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए खरीदारी के लिए गई हुई थी। और फिर हम वापस आ गए और अगली सुबह को आकाश में बादलों के अलावा और कुछ नहीं था। मौसम सूखा था, वहाँ पर बारिश नहीं पड़ी थी और उन्होंने शिकार के समय को स्थगित किया था कुछ और दिन तक के सूखेपन की वजह से। तो मैंने उस समय भाइयों से कहा अब बारिश की पहली बूंद गिरना आरंभ हो गई है, वह पहली बर्फ, वो पहला बर्फ का ओला, जो कुछ भी यह है, जितना हम जल्दी तंबू की ओर जा सकते हैं जाएं, क्योंकि अगले 15 मिनट के अंदर तुम अपने आगे अपने हाथों को भी नहीं देख सकते हो, समझे। और यह बस झटका होगा और तेज हवा होगी और मैं परवाह नहीं करता कि आप देश के बारे में कितना अधिक अच्छी तरह से जानते हैं, आप ठीक वहाँ पर रुक जाएंगे और आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी आप सांस भी नहीं ले सकते हैं और बर्फ के ओले इतनी तेजी से गिरते हैं आप ठीक वहाँ पर मर जाएंगे। और मैंने कहा इससे पहले वो बर्फ के ओले गिरना आरंभ हो जितना जल्दी हो सकता है आप तंबू को समेट लें, मैं परवाह नहीं करता आप जहाँ कहीं पर भी हों। तो ठीक है, मैंने कहा यहाँ ऊपर जाओ और उस पहाड़ी पर बैठ जाओ और मैं ऊपर चढ़कर उस पहाड़ी पर से पत्थर को लुढ़काऊंगा और इत्यादि, और उन हिरण को वहाँ ऊपर से डराऊंगा और फिर वहाँ से नीचे भगाऊंगा, तुम उसे पकड़ लेना जो तुम चाहते हो। तो मैंने ऊपर चढ़ना आरंभ किया और लगभग समय पर मैं वहाँ ऊपर पहुँचा, जिसे हम द सैडल कहकर पुकारते हैं, एक छोटा सा स्थान जो मैं हमेशा ही पार होकर जाता हूँ, जिसे काउकर नोक कहते हैं, जो ठीक वहाँ कॉन्टिनेंटल डिवाइड पर है उस ऊंचाई पर। और जब मैं इस छोटी सी घाटी में पहुंचने पर था, वे बादल काले और काले होते जा रहे थे, वहाँ पर एक भी कार नहीं बची थी, केवल हम लोग ही वहाँ पर थे। दूर तक वे घुड़सवार चरवाहे छावनी पर थे, तो ये खराब और खराब होता चला गया। तो कुछ ही मिनटों में बारिश होना आरंभ हो गई, तो मैंने अपनी बंदूक को लेकर और कोट के अंदर रख दिया और उस बंदूक की दूरबीन को धुएं निकलने की जगह को और उसकी नली को गीले होने से बचाए रखूं, यदि एक भालू या किसी के भी पीछे वापस दौड़ना पड़े। इसलिए मैंने अपनी दूरबीन को इस तरह से पकड़ा और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठकर प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा प्रभु परमेश्वर आप महान यहोवा हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कितने लोगों के पास ये अनुभव है जो मेरे पास था। मैंने भाई पलमार और उनकी ओर और उन स्थानों की ओर ध्यान दिया है जहाँ पर वो उकाब आप जानते हैं, मैंने उसे ऊपर उठते हुए देखा है आप जानते हैं, और कैसे ये वो जगह है जहाँ पर सारी बातों ने स्थान लिया था। यह वहाँ पर मेरे साथ एक बड़ी ही स्वाभाविक बात हुई थी। ऊपर उन पहाड़ों पर मुझे प्रभु के साथ मुझे बहुत सारे अनुभव मिले थे। इसलिए आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं बिना परमेश्वर को देखे, वह तो बस हर कहीं उपस्थित है। तो फिर जब मैं वहाँ पर बैठ गया तब बर्फ के ओले गिरना आरंभ हो गए और हवा इस तरह से घूम गई, और मैंने कहा तो ठीक है मैं पर नीचे जाने का मार्ग जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए अच्छा होगा अभी ठीक यहीं पर रहूं। तो मैंने कहा वहाँ नीचे देखा और अब मैं नीचे तल को और नहीं देख सकता था। वे बादल वो बिखरे हुए थे और घूम गए थे और बर्फ के ओले उड़ने लगे थे और वहाँ पर बर्फ का तूफान था जिसका पूर्व अनुमान बहुत दिनों से किया गया था, एक बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है। भाई टॉम यहाँ पर है, भाई टॉम सिम्पसन जो कनाडा से आए हैं, उन्होंने मौसम के पूर्व अनुमान को सुना था और उन्हें सलाह दी गई थी कि उस देश के भाग की ओर न जाएं, क्योंकि यह मौसम का पूर्व अनुमान कहता है बर्फीला तूफान होगा। आप कहाँ पर है भाई टॉम? मैं सोचता हूँ जी हाँ ठीक यहाँ पर है, और वह बर्फीला तूफान आ रहा था, इसके लिए हर कोई अंदर बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी बंदूक को मेरी लाल छड़ के अंदर वापस इस तरह से रखा और पहाड़ के नीचे चलकर उतरना आरंभ किया, और जब मैंने आरंभ किया मैं घाटी से लगभग आधा मील दूर चला था और ओह प्रभु बड़ा बर्फ का ओला इस तरह से, और हवा बदल गई उस पहाड़ पर और जोर की हवा आने लगी। मैं अब समतल को और नहीं देख सकता था, मैं लगभग 20 फुट या 30 फुट तक मेरे सामने देख सकता था, और मैं जानता था थोड़ा और आगे जाने पर जिसे हम छोटा हॉकबैक कहते हैं, छोटा सा टीला, और फिर नीचे सकड़ी खाड़ी आएगी, और फिर मैं जानता था सकड़ी खाड़ी में चलते जाना है और किस ओर जाना है यदि यह वास्तव में खराब नहीं हुआ है तो। और तो फिर मैंने नीचे बढ़ना आरंभ किया और लगभग आधे रास्ते तक वहाँ चला गया और किसी ने मुझसे कहा जितना आप मुझे साफ साफ सुन सकते हैं उतना साफ, रुको वापस पीछे जाओ। तो मैंने सोचा मैं किस बारे में सोच रहा था, हो सकता है ये बस मेरा ही मन हो, और मैं एक भी कदम और आगे नहीं बढ़ा पाया। डेविड ने मेरे लिए उस सुबह को एक सैंडविच मांग कर दिया था, और मैं सोचता हूँ उसने अपने पिता के लिए भी सैंडविच लाया था। एक बार हमने प्याज और शहद का सैंडविच खाया था, बस यही सब हमारे पास था। इस बार उसने मुझे कीमे का सैंडविच मांग कर दिया था। ओह मैं नहीं जानता ये सब कैसा हो गया था, उसमें लपेटा हुआ था और यह मेरी शर्ट में था और ये मेरी शर्ट में से होकर गीला हो गया था। मैंने सोचा मैं जरा रुक कर और इसे खाऊंगा और हो सकता है ये तब सब सही हो जाएगा। इसलिए मैंने सैंडविच को निकाला, लगभग 10 बजे की बात है, और मैंने सैंडविच को खाना आरंभ किया। और जब मैं सैंडविच को खा रहा था, मैंने सोचा अब मुझे ठीक लगने लगेगा, और मैंने आगे बढ़ना आरंभ किया। लेकिन किसी ने तो कहा, वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो, उस तूफान में से होते हुए वापस एक आधा मील या और पीछे पहाड़ पर उस अंधेरे वन में, जहाँ से आप मुश्किल से ही दूर दूर तक किसी साधन को भी देख नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हो रहा हूँ, और मैं पिछले 30 वर्षों से एक मसीह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना मूर्खतापूर्वक दिखाई देता है। प्रभु को सोचे, उसे करें जो प्रभु करने के लिए कहता है। और मैं मुड़कर और वापस खाड़ी की ओर जाने लगा, मेरे वापसी के रास्ते को समझने लगा। ओह, बर्फ के ओले बढ़ते और बढ़ते जा रहे थे, अंधकार गहरा और गहरा होता गया, और मैं वहाँ पर बैठ गया और मेरे कोट को इस तरह से वहाँ पर रख दिया, और मेरी शर्ट के अंदर दूरबीन को रख दिया और नीचे बैठ गया। मैंने सोचा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऊपर वापस क्यों आया हूँ। और मैं कुछ मिनट तक रुका रहा और फिर से उठ खड़ा हुआ, और मैंने इतना साफ जो कि मैं कभी सुनना चाहता हूँ, एक आवाज ने कहा, मैं धरती और आकाश का सृष्टि करता हूँ, मैंने हवाओं और बारिश को बनाया है। मैंने अपनी टोपी को उतार दिया, मैंने कहा, महान यहोवा, क्या ये आप हैं? उसने कहा, मैं ही वो एक हूँ जिसने हवाओं को समुद्र पर से शांत किया, मैं ही वो एक था जिसने लहरों को नीचे किया, मैंने आकाश और धरती को बनाया है, क्या मैं नहीं था? क्या मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें बताया कि तुम उन गिलहरियों के लिए बोलो और वे अस्तित्व के अंदर आ गई? मैं परमेश्वर हूँ। अब जब एक आवाज आपसे बातें करती है, वचन से देखो, यदि ये वचन से नहीं है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। मैं परवाह नहीं करता ये कितनी साफ है, आप इससे दूर रहें। मैंने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, तूफानों और आंधियों से बोलो और ये दूर चले जाएंगी। अब ये बाइबल मेरे सामने रखा हुआ है जिसमें मेरा जीवन है। मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा, मैं आपकी आवाज पर संदेह नहीं करता हूँ प्रभु। मैंने कहा, बादल, बर्फ, बारिश, ओले, मैं तुम्हारे आगमन को वापस भेजता हूँ। यीशु मसीह के नाम में अपने स्थान में वापस चले जाओ। मैं कहता हूँ उस सूर्य को तुरंत ऊपर आना अवश्य है और 4 दिनों तक चमकना है, जब तक हमारे शिकार का दौरा पूरा नहीं हो जाता और मैं अपने भाइयों के साथ निकल नहीं जाता। ये हवा का झोंका था वहाँ से जाते हुए, वुश इस तरह से, और इसने जाना आरंभ किया, जाते हुए वुश फिर से चला गया, व्यू 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 बंद हो गया। मैं स्थिर खड़ा रहा, मेरे भाई वहाँ ऊपर सोच रहे थे क्या घटित हो रहा है, और वे ओले और बारिश रुक गई, और कुछ हवा पहाड़ों में से होती हुई आई और बादलों को ऊपर उठा लिया, और कुछ यहाँ चले गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और कुछ ही मिनटों में सूर्य सुंदर तरीके से चमकने लगा और गर्म होने लगा। यह सत्य है, परमेश्वर जानता है, यही सच्चाई है। मैं बस वहाँ पर खड़ा होकर केवल यहाँ वहाँ देखने लगा, मेरी टोपी को उतारते हुए मैं देख रहा था। मैंने, आप कहेंगे मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था, मैंने सोचा ये वही सृष्टि का परमेश्वर, यह सब उसी के हाथ में है जिसे वो मुझे बता रहा था। और मैंने अपनी बंदूक को लिया, उसके दूरबीन को साफ किया, वापस नीचे घाटी की ओर जाना आरंभ किया, और किसी ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ इस जंगल में सैर करने क्यों नहीं चलते हो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, हाँ प्रभु, मेरे पूरे हृदय से, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी जिसे मैं कर सकता हूँ कि आपके साथ चलूं। तो मैंने अपने बंदूक को अपने कंधे पर रखा और उसमें से होकर चलना आरंभ किया। वहाँ कभी एक कुल्हाड़ी भी नहीं चलाई गई थी, वो एक अछूता बंद था जिसमें से होते हुए चलना आरंभ किया। और जब मैं साथ ही चलने लगा, शिकार की पंगडंडियों में से होकर, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं उस जगह पर जाऊँगा जहाँ कल हमारी विवाह की सालगिरह थी, और मैं वहाँ पर कुछ मिनटों के लिए खड़ा रहूँगा मेडा को जरा सा सलाम करने के लिए, जहाँ पर छोटे बिल पर एक विषैले सांप का झुंड था। और मैंने कहा, मैं सोचता हूँ मैं वहाँ ऊपर जाकर मैं अपनी विवाह की सालगिरह को सलाम दूंगा, फिर मैं वहाँ वापस नीचे दूसरी तरफ जाऊँगा उस घने जंगल में, और यहाँ वहाँ चलूँगा, और यहाँ वहाँ जाकर और कोरल शिखर की ओर जाऊँगा, और फिर से वापस उस मार्ग में आ जाऊँगा। बस चलते जा रहा था और आनंद कर रहा था। मैं कह रहा था, पिता मैं जानता हूँ आप मेरे साथ चल रहे हैं, और क्या ही सौभाग्य की बात है, कोई भी इतना महान नहीं है जिसके साथ मैं चल सकूं, उसी परमेश्वर के साथ। और वहाँ गर्म सूर्य चमक रहा था। यहाँ तक जब मैं पहाड़ों में से बाहर आया और पेट्रोल भरने के लिए उस स्थान पर रुका और मैंने कहा, क्या सुंदर दिन है। 3 दिनों के बाद उस देश के किसी भाग पर कभी भी बारिश नहीं हुई थी, जब तक 4 दिन नहीं बीत गए थे। सूरज हर दिन चमकता रहा, क्या सही है भाइयों, और आकाश में एक भी बादल न था। और मैं पेट्रोल भरने की जगह पर आया, मैंने कहा, निश्चय ही क्या एक सुंदर दिन है। हाँ यह है, मैंने कहा, बहुत ही ठंडा रहा था। मैंने कहा, यह एक अजीब सी बात है। उस उपस्थित व्यक्ति ने कहा आप जानते हैं, उन्होंने हमें बताया था कि हम एक बहुत बड़े बर्फीले तूफान से होकर जाएंगे, लेकिन अचानक ही वो रुक गया। मैं आगे बढ़ा न्यू मेक्सिको के मार्ग पर। बिली और मैं, मेरा बेटा एक छोटे से स्थान पर कुछ लेने के लिए सुबह को निकले, और मैंने कहा, निश्चय ही यह बहुत ही सुंदर दिन है। हाँ यह है, मैंने कहा, यह बहुत ही ठंडा दिखाई देता है। हाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, क्या आप यहीं से हैं? कहा, नहीं मैं विस्कोसिन से हूँ, या कहीं से तो वो था। कहा, मैं यहाँ लगभग 20 वर्षों से आते रहा हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ आप इसे घर जैसा कह सकते हैं। मैंने कहा, फिर यहाँ के आप एक निवासी है, मैं सोचता हूँ। तो मैंने कहा, हाँ श्रीमान। तो मैंने कहा, ऐसा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा धूल से भरा हुआ है। कहा, क्या आप जानते हैं, बहुत ही अजीब सी बात घटित हुई है। कहा, हमने एक मौसम का अनुमान सुना था, हमें बर्फीले तूफान मिलेगा, बहुत ही बर्फ गिरेगी, और ये असल में आरंभ भी हो गई थी और बाद में बंद हो गया। मैंने कहा, आप ऐसा न कहें, और बिल्कुल शांत हो गया। और मैं घर पर आया और भाई टॉम ने कहा कि उसे बताया गया था उस रास्ते से मत जाना, एक बर्फीला तूफान वहाँ से निकलने वाला था, और वह ठीक उस रास्ते में से होकर आया यहाँ तक बिना एक बारिश का छींटा या किसी भी चीज का। वह अब भी वही परमेश्वर है, देखो उतना ही जितना वो हमेशा से रहा था, समझे। वहाँ ऊपर जाते हुए मैं आगे जा रहा था। अब ये वाला भाग, मैं आशा करता हूँ मेरी पत्नी को ये टेप नहीं मिलेगी, देखा, लेकिन मैं आपको कुछ तो बताने जा रहा हूँ, और अब मैं आपको नहीं बताता, मैं केवल आपको सच्चाई को बताऊंगा, देखो, और केवल यही इसे करने का तरीका है। मैं हमेशा ही सोचता रहता, मेरी पत्नी मेरे लिए शिकायत क्यों नहीं करती है जब मैं हमारी विवाह की सालगिरह पर बाहर उन दौरों पर जाता हूँ। आप जानते हैं मैंने अपने मन में क्या सोचा था। मैंने कहा, मेरे घर के आसपास बहुत से लोग रहते हैं, और फिर मैं हमेशा ही, आप जानते हैं मैं कैसा गंभीर रहता हूँ, और जो भी बात करता हूँ, और मैं परमेश्वर और बाइबल या जो कुछ भी है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हो सकता है वो सोचती होगी या उसके लिए थोड़ा आराम होता है वो जब मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने देती है शिकार करने के लिए। मैं यह अकेला ही सोचकर साथ ही वहाँ के लिए निकल जाता। जो मैं उसे क्षमा मांगूंगा, और मैंने परमेश्वर से इस तरह के विचार के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला ही जाता था। मैंने सोचा तो वह सोचती है तो मेरे प्रभु, वो एक घरेलू स्त्री है आप जानते हैं, और हर समय रसोई घर में रहती है या नहीं तो वह बाहर, और आप में से हर एक जन उसे जानता है कि कपड़े धोने की मशीन हमेशा ही चालू रहती है, और इसलिए मैं जाकर उसे बाहर खींचता और कहता हूँ, इस तरह से कपड़ों को धोते मत रहो, मुझसे बात करो, देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे कुछ तो तुम्हें बताना है, तुम भी मुझे कुछ बताओ। उसने कहा, ठीक है, तुम जानते हो मैं प्रेम करती हूँ। फिर वो कपड़े धोने चली जाती, वैसे ही मेहनत करती जैसे वो हमेशा करती है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से करो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे सामने आकर बैठो। ओह बिल, मेरे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, और मैंने सोचा तो ठीक है, देखो यहाँ चले जाने से उसे काम करने के लिए समय मिल जाता है। यह सोचकर मैं वहाँ अकेला ही चला जाता था। अब याद रखना, मैंने इस बाइबल को यहाँ पर रखा है ताकि तुम देखो कि मैं वचन के सम्मुख खड़ा हूँ। जैसे मैं अकेला चल रहा था, कुछ तो मेरे साथ हुआ। मैंने आरंभ किया, मैंने उस बारे में सोचा कि जब मैंने उसे पहली बार ऊपर वहाँ पर हनीमून पर लेकर गया, वो बहुत ही सुंदर थी, छोटी सी, काले बाल, बुरी आंख वाली लड़की, और मैं उसे उन लकड़ियों के कट्टे के ऊपर उठाकर बैठाता, आप सारी बात को जानते हैं और आदि, और मैंने उसे वहाँ पर उस स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ मैंने कुछ भालुओं को मारा था, और मैं उसे यह दिखाना चाहता था जहाँ पर मुझे ये भालू मिले थे, और वो मेरे उन घुड़सवारी के जूतों के पहने हुए थी, और यह लगभग 21 या 22 वर्ष पहले की बात है, 21 वर्ष, मैं सोचता हूँ यह उस वक्त की बात है, हमने 1941 में विवाह किया था, और मैं उसे उन लकड़ियों के गट्टे के ऊपर बैठाता, आप जानते हैं। और अब मैंने सोचा, अब वो छोटी बेचारी स्त्री मेरे साथ दिन काटते हुए अब वो बूढ़ी हो रही है। जी हाँ, मैंने सोचा तो ठीक है, और मैं गया, और मैंने कुछ दिनों से दाढ़ी को साफ नहीं किया था, और मैंने देखा कि मैं भी बूढ़ा होने लगा हूँ, और मैंने देखा मेरी दाढ़ी यहाँ से सफेद होने लगी है, और मैंने सोचा बूढ़े आदमी अब तो समाप्त होने पर है, देखो तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो अच्छा होगा जल्दी से कर लो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो, देखा। और इसलिए मैं इस तरह से अकेला निकल गया। कुछ तो बाद में जगह ली। अचानक ही मैं हर एक चाल ढाल में हर तरह से एक लड़का सा हो गया था। मेरी विचार प्रक्रिया एक लड़के के जैसी थी और मैंने अपने सर को नीचे करके और ऊपर की ओर देखा और बिल्कुल जैसे साफ तौर से मैंने उसे कभी देखा था वैसे ही वो वहाँ पर मेरे सामने अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ी थी। और मैं रुक गया, अपने चेहरे को मला और मैंने देखा। मैंने कहा, मेडा क्या यह तुम ही हो प्रिय? मैंने यहाँ पर देखा, मैंने सोचा अब ये क्या हुआ? और मैंने सोचा हाँ, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। और फिर ये सब बदल गया, मैं वापस फिर से एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था और मेरे सामने से दर्शन चला गया था। और मैं रुक गया और मैंने अपनी टोपी को फिर से निकाला और अपने हृदय के ऊपर रखा। मैंने कहा, यीशु मेरे हृदय पर बहुत वर्षों से बोझ है, मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास बोझ है। मैंने पश्चाताप किया है, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं जानता हूँ, और यह बोझ मुझे छोड़कर क्यों नहीं जा रहा है। और मैंने बस चलना आरंभ रखा और जब मैं इस छोटे से टीले पर पहुंचा जो केवल लगभग 30 या 40 यार्ड मेरे सामने की ओर था, मैंने छोटे से टीले पर चलना आरंभ किया। मैं बहुत ही कमजोरी महसूस करने लगा था और वहां पर एक छोटा सा आवाज करता हुआ सर्प था, लगभग 10 इंच लंबा, ऊपर आकर और उसने एक एल आकार को बनाया और फिर वापस ऊपर चला गया। और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैं बहुत ही कमजोरी महसूस करने लगा, मैं लड़खड़ा रहा था। तो मैं अपनी टोपी को वापस पहन लिया और अपने सर को इस तरह से टिकाया, बस वहाँ पर खुद को ठीक किया। अपने सर को यहाँ मैंने इसके विपरीत रखा जहाँ वो आवाज करता हुआ सर्प इस तरह से था। यह एक पहाड़ी पेड़ है, यह जैसे वो सनोवर के पेड़ जैसा दिखता है, आप जानते हैं। और यह एक और मैं वहाँ उसके सहारे पड़े हुए था। मैं तभी वहाँ पर अपने सर को झुकाए हुए खड़ा हुआ था। उस सूर्य की गर्मी मेरे पीठ पर आ रही थी और मैं सोच रहा था वही परमेश्वर जिसने बारिश और उस तूफान को रोका। और मैंने कुछ तो आवाज को आते हुए सुना, टिप टिप टिपट। मैंने सोचा ये क्या है, पानी गिरना पूरी तरह से बंद हो गया है, सूरज निकला हुआ है, यह टिप आवाज क्या है? मैंने नीचे देखा, यह मेरी खुद की आंखों से बहता हुआ पानी था, मेरी सफेद दाढ़ी में से होकर नीचे बह रहा था और उन सूखी पत्तियों पर गिर रहा था जिसे परमेश्वर ने सुखा दिया था जो मेरे सामने गिरी पड़ी थी। और मैं बस इस तरह से वहाँ बिल्कुल ठीक उस पेड़ के सहारे पर खड़ा हुआ था। मेरा यह हाथ नीचे था, मेरा सर पेड़ के ऊपर रखा हुआ था, मेरा हाथ इस तरह से बंदूक की नली पर था। वहाँ खड़ा हुआ और रो रहा था। मैंने कहा, परमेश्वर मैं आपका सेवक होने के योग्य नहीं हूँ। और मैंने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, मेरा गलतियाँ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। प्रभु आप मेरे लिए बहुत ही भले रहे हैं। मेरी आंखें बंद थी और मैंने कुछ तो होते हुए सुना, स्टॉर्म 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 स्टॉर्म। मैंने अपनी आंखों को उठाया और मेरे ठीक सामने तीन हिरण खड़े हुए थे। और मैंने सोचा वहाँ पर एक भाई इवांस के लिए है, एक भाई वुड्स के लिए है और वहाँ पर तीन हिरण खड़े हुए थे। देखो बस जिसके लिए मैं देख रहा था, अब बारिश रुक गई थी। मैं अपनी बंदूक को लेने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि मैं ये नहीं करूँगा। देखा, मैंने उससे प्रतिज्ञा की है, मैं इसे नहीं करूँगा। और किसी ने मुझसे कहा, लेकिन ये वहाँ पर है। और मैंने सोचा, हाँ यही है जो एक मनुष्य ने दाऊद को एक समय कहा था। मैंने कहा, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है, ये तुम्हारे हाथों में है, आप जानते हैं राजा शाऊल को। और योआब ने उसे बताया, उसे मार दो, वहाँ पर वो पड़ा हुआ है। और उसने कहा, परमेश्वर ने उसके अभिषेकित को छूने को मना किया है। और वे हिरण वहाँ खड़े होकर और मुझे देखने लगे और मैंने सोचा वे भाग नहीं सकते हैं, उनके भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। वह मुझसे 30 यार्ड की दूरी पर भी नहीं थे और मैं इस बंदूक को लेकर यहाँ पर खड़ा था और वहाँ वे तीन हिरण थे। नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। ये एक मादा और दो छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं बस बंदूक को नहीं उठा पाया। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा भी नहीं हटा, मैं बस वहीं पर रुके रहा। मैंने कहा, मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि मैं इसे नहीं करूँगा। हालांकि उन भाइयों को उन्हें इन हिरण की आवश्यकता भी नहीं है, समझे, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मैं बस इसे नहीं कर सकता हूँ। और वह मादा चलकर आई। अब ध्यान से सुनना, वहाँ ऊपर वे 100 पुरुष थे जो उन पर 4-5 दिनों से गोलियां चला रहे थे। क्या डरे हुए थे? वो पहले लाल चिन्ह और मैंने लाल रंग की शर्ट और लाल टोपी पहन रखी थी। पहले तो उन्हें लाल चिन्ह पर से चले जाना था, लेकिन वे वहाँ पर खड़े रहे। वे तीनों ठीक मेरी ओर देख रहे थे। मैंने कहा, माँ अपने बच्चों को लेकर और इस जंगल में चली जाओ, तुम मेरे हाथों में हो, मैं तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखा, और वह और नजदीक चलकर आई, उसने मेरी ओर देखा। वे सब इतने नजदीक आ गए, इतना तक कि मैं उन्हें लगभग अपने हाथों से खिला भी सकता था। वे हवाएं उनके ऊपर उड़ रही थी, तो वो वापस पीछे मुड़ी। वे सब तीनों ही कुछ कदम पीछे हटे और यहाँ पर वो फिर से वापस आई, मेरे पास चलकर आई। मैं थोड़ा भी नहीं हिला, बस वहीं पर खड़ा रहा। मैंने कहा, उस जंगल के अंदर चले जाओ, मैं भी इसे पसंद करता हूँ जीना। देखो, तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम भाग नहीं सकते, तुम जानते हो तुम नहीं भाग सकते। मैं उन तीनों को लगभग एक ही क्षण में खत्म कर सकता हूँ, तीन क्षणों में, कैसे भी, जितना तेजी से मैं गोली को चला सकता हूँ, और वे भाग नहीं सकेंगे। वह ठीक मेरे सामने खड़े थे, देखा। और मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चले जाओ, जियो। और मैं वहाँ पर खड़ा रहा। वे चलकर निकल गए, जंगल के अंदर चले गए। मैंने अपने चेहरे को इस तरह से साफ किया और फिर तभी कुछ तो घटित हुआ। एक आवाज आई, बहुत ही साफ, वहाँ ठीक उस नीले आकाश में से, ना ही एक बादल से। यह लगभग कुछ ही समय के अंदर हुआ, कुछ ही समय में। और एक आवाज बोल उठी और कहा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया, क्या तुमने नहीं किया? मैंने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा को याद करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो बोझ मेरे हृदय में से चला गया, यह तब से लेकर नहीं है, होने पाए यह कभी भी फिर से न हो। फिर मैं टूसान में आया। अजीब बात थी, मुझे कभी भी नहीं हुआ था जब से मैं वहाँ से आया था। मैं इसे विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर ने उस घड़ी के लिए इसे रोके रखा था। मैं विश्वास करता हूँ कि अब समय नजदीक है, क्योंकि कुछ तो अवश्य ही जगह लेना है। यदि हम केवल इस सच्चाई को ले सकते हैं, तो अब कुछ समय के लिए, यदि हम केवल इसे समझ सकते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है, वो जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। हम इसे नहीं समझ सकते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम इसे विश्वास करते हैं और हम जानते हैं ये सच्चाई है, लेकिन हम सचमुच में इसे नहीं समझ सकते हैं। बढ़कर है वो जो तुम में है जो संसार में है, उससे तुम में क्या है जो बढ़कर है? यह मसीह है, वो अभिषेकित परमेश्वर जो मसीह में था तुम में है। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। फिर यदि वो तुम में है, यह तुम नहीं हो जो अब जी रहे हो, यह तो वो है जो आप में जी रहा है। समझे, यह आप नहीं सोच रहे होते हो, आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, यह तो वो है जो इसके बारे में कहता है। समझे, फिर यदि वो तुम में है तो वो मनुष्य निश्चय ही इनकार नहीं करेगा जो उसने कहा है। वह ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वह इसे मानेगा जो उसने कहा है, और वो उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें से होकर वो अपने आप को प्रमाणित करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इसे हर किसी के साथ करता है। मूसा के समय में इसराइल के बच्चों की अगुवाई की, वहाँ पर एक था जो मूसा था, बाकी के लोगों ने केवल संदेश का अनुकरण किया। समझे, उनमें से कुछ लोगों ने उठकर इसकी नकल करने की कोशिश की। परमेश्वर ने कहा, अपने आप को अलग करो, और बस उन सबको निगल लिया। समझे, समझे। अब लेकिन बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। परमेश्वर तुम में है जैसे वो यीशु मसीह में था, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर था उसने मसीह में उड़ेल दिया, और जो कुछ मसीह था उसने कलीसिया के अंदर उड़ेल दिया। देखो, यही परमेश्वर आप में है, वो वही तुम में है। कोई आश्चर्य नहीं, हवा और लहरों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसके शब्दों का पालन किया, उसके शब्दों का पालन किया, क्योंकि यह उसमें से होकर परमेश्वर का वचन था। वह एक मनुष्य था, लेकिन वह वचन था जो देहधारी हुआ। समझे, और जब उसने बोला, यह मनुष्य के होठों से बोलता हुआ परमेश्वर था। समझे, कोई आश्चर्य नहीं, हवा और लहरों ने, वही सृष्टिकर्ता जिसने आंधी और लहरों की सृष्टि की उसमें था। अब इस पर सोचें, अब गहराई से सोचें। आगे मैं समाप्ति के क्षण में आ रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, दुष्ट आत्माएं उसके शब्द पर लकवाग्रस्त हो गई थी। यह उसमें परमेश्वर था, यह मसीह में परमेश्वर था, दुष्ट आत्माएं लकवाग्रस्त हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं, वे मुर्दे जो मिट्टी में मिल गए थे उसके शब्द पर वहाँ पड़े नहीं रह सके, क्योंकि वो वचन था। उसने लाजरस से कहा, चार दिन से मरे होने और बदबू आने के बाद उसका चेहरा नाक सड़ गया था, ज्यादा समय होने के कारण लाजरस बाहर आ, और एक मरा हुआ मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्यों? यह परमेश्वर था, वह जो मसीह में था वो परमेश्वर था। उसकी उपस्थिति में मुर्दे नहीं खड़े हो सके, यह मसीह में परमेश्वर था। वह हवाएं, अब याद रखना, परमेश्वर ने हवाओं की सृष्टि की, यह तो वायु है। परमेश्वर ने लहरों की सृष्टि की, यह तो वो पानी है। लेकिन जब शैतान इसके अंदर चला जाता है, वो इसे हिलाने लगता है विनाश को लाने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया परमेश्वर के पुत्र होने के लिए, लेकिन जब शैतान उनके अंदर चला जाता है, देखो यह गड़बड़ी को लाता है। अब यह शैतान था जो उन हवाओं के अंदर जाकर और जो उस तूफान को भेजता है। क्या यह वही सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता जिसने हवाओं को बनाया और कहा वापस चले जाओ जहाँ पर मैंने तुम्हारी सृष्टि की थी? क्या यह वही सृष्टिकर्ता नहीं था जो वहाँ कोलोराडो की पहाड़ी पर एक दिन खड़ा था? देखा, क्या यह वही नहीं था जो एक मछली को लेकर और इसे तोड़ सकता है और कुछ और टुकड़ों को बढ़ाता जाता है? वास्तव में यह होने के लिए उसके पास ये नहीं था, वह उसे बोल सकता था। क्या यह वही परमेश्वर नहीं है जिसने गिलहरियों की सृष्टि की? फिर वो जो मसीह में था हम में है, देखो, क्योंकि यह उन्हीं कामों को करता है जो उसने किए, वही काम। मुर्दे उसकी उपस्थिति में उसके शब्द पर नहीं खड़े हो सके। देखो, हमारे पास 5 लोगों के वास्तविक कथन है जो मरे हुए थे और प्रभु दर्शन को दे रहा था और उनके पास जाकर उन्हें वापस जिलाया। यहाँ पर वो एक बैठा है ठीक वहाँ पर अभी, जो उस वक्त वहाँ पर मरा हुआ था जहाँ वो ठीक अभी बैठा हुआ है। और यहाँ पर आज रात को वो जीवित है जिसे एक हृदय का दौरा पड़ा था। वहाँ उसकी पत्नी है जो एक नर्स है। हम नीचे गए, सब कुछ खत्म हो चुका था, उसकी आंखें चढ़ गई थी और वह जा चुका था। यहाँ पर वो है जीवित, क्योंकि बढ़कर है वो जो यहाँ पर है उससे जो संसार में है। बढ़कर है वो, यह परमेश्वर है, वह सृष्टिकर्ता। हवाओं और लहरों को उसकी आज्ञा का पालन करना था। दुष्ट आत्माएं लकवा ग्रस्त हो गई। सारी प्रकृति ने उसकी आज्ञा को माना क्योंकि वह प्रकृति का सृष्टिकर्ता था। और जब हम इन बातों को सोचते हैं, यह हमें स्तंभ कर देती है, तब हम इन चीजों को समझने लगते हैं। आप समझे, यह क्या है? यह मनुष्य नहीं है, मनुष्य इसे नहीं कर सकता। मनुष्य तो सृष्टि का भाग है, समझे, लेकिन यह हवाएं और लहरें हैं जो सृष्टिकर्ता की आज्ञा का पालन करते हैं, समझे। और इसे करने के लिए सृष्टिकर्ता को होना है, क्योंकि वो जो तुम में है उससे बढ़कर है। वह जो संसार में है वह उन उत्पात का कारण हो सकता है, वही जो संसार में है। वो जो तुम में है सृष्टिकर्ता है जिसने हवाओं को बनाया। वो हवाओं में से होकर शैतान को डांट सकता है और वहाँ पर शांति हो गई। और वो तूफान में से शैतान को डांट सकता है, वहाँ पर कोई भी तूफान नहीं था। वह सृष्टिकर्ता है और वो जो तुम में है जो वह संसार में है उससे बढ़कर है, समझे। शैतान संसार का है, संसार उसी का है, वह हमेशा से ही उसी का रहा है। तुम क्यों गिर गए ओ लूसीफर, भोर के पुत्र? देखो, संसार उसी का है। यही जब उसे स्वर्ग में से लात मारकर बाहर कर दिया, वह इसके लिए वापस आया है, समझे। वही वो एक था जिसने मसीह से कहा, ये राज्य मेरे हैं, मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा। वे उसी के हैं और वही है वो जो संसार में है। यूहन्ना ने केवल चेलों को बताया, तुमने मसीह विरोधी के बारे में सुना है जो आने वाला है, और वो यहाँ पर पहले से ही आज्ञा न मानने वालों के अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन छोटे बच्चों, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, और वो जो तुम में है उससे बढ़कर है वह जो संसार में है। यही मसीह तुम में है, वह जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो यीशु मसीह व्यक्ति के अंदर प्रकट हुआ था। परमेश्वर मसीह में खुद को संसार के साथ मेल मिलाप करा रहा था। आइए कहें, आप कहेंगे फिर भी वह तो परमेश्वर का पुत्र था भाई ब्रैनम, तो ठीक है, आइए देखेंगे यदि वह अनंतकालिक सनातन परमेश्वर है। बढ़कर था वो जो यहोशु में था उस सूर्य से, और यहोशु एक मनुष्य है आपके और मेरे जैसा, पाप से जन्मा था। और बढ़कर था वो जो यहोशु में था और वो सूरज जो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा चलता था। परमेश्वर ने सूरज को चमकने की और अपने आप में घूमने की आज्ञा दी, और इसे परमेश्वर के नियम के द्वारा संचालित और नियंत्रण किया जाता है। लेकिन बढ़कर था वो जो यहोशु में था उससे जो परमेश्वर के नियम थे, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता स्वयं यहोशु में था। जब यहोशु ने ऊपर सूर्य की ओर देखकर और कहा, तुम वहीं पर खड़े रहो जहां पर तुम हो, और चांद वहीं पर बने रहो जहां पर तुम हो, जब तक मैं लड़ाई को समाप्त नहीं कर देता हूं। और सूर्य और चंद्रमा ने उसकी आज्ञा को माना, क्योंकि वह जो यहोशु में था वह उस सूर्य और चंद्रमा से बढ़कर था। वो जो यहोशु में था, वह जो मूसा में था उस मिस्र से बढ़कर था। मिस्र संसार की सबसे शक्तिशाली सेना थी। मिस्र की सेना ने उस समय पर संसार पर जय पाई थी, लेकिन बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो मिस्र था, क्योंकि मूसा ने मिस्र पर जय पाई। बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो स्वयं यहाँ तक प्रकृति में था। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने उसके वचन को लिया और उसे मूसा को दिया और कहा वहां जाकर उस सूर्य को कहो कि मत चमकना, और सूर्य घोर अंधकार में हो गया। क्या यह सही है? वह सूर्य को चमकने को लगा सकता है और बादलों को पीछे हटा सकता है, या वो सूर्य को अंधकार में बना सकता है। वह परमेश्वर है, वह जो कुछ भी चाहे कर सकता है, और वो विश्वास करने वाले बच्चों में है। आमीन। ऐसा ही है। वहाँ उस स्थान में एक भी मक्खियाँ नहीं थी। हो सकता है ये गर्मियों का समय था, वहाँ कोई मक्खियाँ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा जाकर मेरे शब्दों को कहो, मैं तुम्हारे मन में डालूंगा कि क्या बोलना है, और वहाँ पर जाकर और जमीन से कुछ मिट्टी को लेना और उसे ऊपर हवा में मिट्टी को उछालना, और उसने कहा वहाँ पर मक्खियाँ होने दो, और संभवतः वहाँ सारे जमीन पर बहुत बड़ी मक्खियाँ कुछ ही घंटों में रेंगने लगी। क्या यह सही है? वो सृष्टि करता। वहाँ कोई मेंढक नहीं थे, तो उसने अपनी लाठी को निकाला और कहा वहाँ पर मेंढक होने दो, और हर कहीं पर कूदते हुए मेंढक थे, इतना तक कि सारा देश दुर्गंध युक्त हो गया। क्या यह सही है? जब वो लाल समुद्र के पास आया और यह उसके रास्ते पर था, परमेश्वर ने कहा समुद्र से बोल। मूसा ने समुद्र से बोला, और बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो समुद्र स्वयं में था। क्या यह सही है? ओह प्रभु, अब आप देखिए, बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो संसार में है, बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो कुछ संसार में की प्रकृति थी। उसने प्रकृति को आज्ञा दी, और जो कुछ भी परमेश्वर ने उससे कहने के लिए कहा उसने उसे कहा, और उसी तरह से यह वहाँ पर था। वही परमेश्वर आज रात हमारे साथ है, हमारे साथ ही नहीं लेकिन हमारे अंदर है। उसने साबित किया है वह हमारे अंदर है। वो जो तुम में है इस संसार में है उससे बढ़कर है। हम संसार से भला क्यों डरे? यहाँ एक दिन उन्होंने यहाँ पर एक तरह के डायनासोर के दांतों को पाया, ऊपर वहाँ यहीं कहीं पर। मैं सोचता हूँ आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यहाँ ऊपर निगरिया के जलप्रपात में कहा गया इसका वजन 6 पाउंड है। मैंने सोचा वे कहेंगे यह एक मनुष्य में से आया है, लेकिन मैं सोचता हूँ उन्होंने इसे बदल कर कहा किसी बड़े जानवर से आया है। यह जानवर संभवत है एक समय धरती पर हुआ करते थे, वह अब कहाँ पर है? क्या आप जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर डायनासोर को आज्ञा दे सकता था कि इस धरती के ऊपर आ जाए? अगले ही घंटे में 40 मील बड़े बड़े वहाँ पर डायनासोर होंगे। आप जानते हैं परमेश्वर इस संसार को मक्खियों से नष्ट कर सकता है, वह मक्खियों को बुला सकता है। वो कहाँ पर चली गई जब वो मर जाती है? मक्खियों का क्या होता है? टिड्डियों का क्या होता है जब गर्मी का मौसम आता है और 40 तापमान से शून्य में चला जाता है, और फिर अगली ठंडी का मौसम आता है? बड़ी टिड्डियाँ हर कहीं सारी जगह पर होती है। वह कहाँ से आई? वह सृष्टि करता है जिसने इसे बोलकर अस्तित्व के अंदर लाया है। वो परमेश्वर है, प्रकृति उसके वचन की आज्ञा को मानती है। जहाँ पर हमने बहुत से भाइयों को उत्तेजित होते हुए देखा है, वे प्रभाव में आ जाते हैं कि परमेश्वर एक कुछ तो बात को कहने के लिए कह रहा है, और वे कहते हैं यहोवा यो कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। यही वो कारण है यह बात नहीं घटित होती है, लेकिन जब यह सचमुच में परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है, इसे होना ही है, इसे उसी तरह से होना ही है। समझे? जब परमेश्वर बोलता है इसे होना होगा। बढ़कर है वो जो मूसा में था उससे जो मिस्र में था, बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो कुछ फिरौन कर सकता है उसका सारा जो सम्मोहन था, बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो जादूगरों के अंदर था, बढ़कर था वो जो मूसा में था उससे जो कुछ प्रकृति में है, बढ़कर है वो जो दानियल में था जो शेरों से भी बढ़कर था। वो भूखे शेरों को रोक सकता था, इसलिए कोई भी जो किसी को भी रोक सकता है वो बढ़कर है जिसे रोका गया है। तो वो भाग कर आया, भूखा था, दानियल को खाने के लिए आता है, और बढ़कर था वो जो दानियल में था उससे भी जो शेरों में था। अब जब शेर को पहले बनाया गया वह मनुष्य का एक मित्र था, यह तो वो शैतान है जो उसे यह करने को लगाता है। यह सही बात है। और सहशताब्दी में भेड़िया और मेमना एक साथ भोजन करेंगे और शेर बैल के जैसे घास खाएगा, बैल के साथ वो बैठेगा। वे सहशताब्दी में कुछ भी नुकसान और नष्ट नहीं करेंगे, शैतान चला जाएगा। यह तो वो शैतान है जो पशुओं को जंगली बनाता, फाड़ता और काटकर और खाता है, और इस तरह की बातों को करता है जिस तरह से वे करते हैं। यह तो शैतान है जो ऐसा करता है, लेकिन बढ़कर था वो जो दानियल में था उससे जो शेरों में था। देखा, बढ़कर था वो जो नबी में था उससे जो उस शेर में था, बढ़कर था वो जो इब्रानी बच्चों में था, बढ़कर था वो जो उनमें था उससे जो उस अग्नि में था। क्योंकि उन्होंने उन्हें अग्नि के अंदर फेंक दिया था और वह जो उनमें था उनके साथ था और उन्हें आग से जलने से बचाए रखा। जैसे वो भट्टी पहले तपती थी उससे भी ज्यादा 7 गुना और तपाई गई थी। यह सही है। बढ़कर था वो जो इब्रानी बच्चों के साथ था उससे जो संसार में था। वहाँ नबुकदनेस्सर या बेलत्शर बैठा हुआ था। नबुकदनेस्सर मैं सोचता हूँ वही था जिसने उस आग की भट्टी को हमेशा से भी 7 गुना ज्यादा अधिक किया था जो शैतान के द्वारा प्रेरित हुआ था ताकि उन लोगों को ले क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के लिए खड़े थे और उन्हें उस भट्टी के अंदर डाल दिया जो हमेशा से भी 7 गुना ज्यादा तेज की गई थी और यह उन्हें जला भी न सकी क्योंकि बढ़कर था वो जो शर्दक मेशक और अभिनगो के अंदर था उससे जो संसार में है। निश्चय ही ओह प्रभु बढ़कर था वो जो एलिया में था उससे जो पीतल के रंग के आकाश में था क्योंकि वह पीतल के रंग के आकाश से बारिश को ला सकता था जो वहाँ 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई थी। बढ़कर था वो जो एलिया में था उस मृत्यु से क्योंकि जब उसके मरने का समय आया परमेश्वर ने उस बूढ़े थके हुए नबी को देखा जो इजाबेल को ताड़ना दे रहा था और उसके चेहरे की लिपाई पुताई को और आधुनिक चीजों पर वो एक तरह से थका हुआ था और वो यहाँ तक कि अपने घर पर भी चलकर नहीं जा सका। जैसे उसने हनोक के साथ किया उसने एक रथ को भेजकर उसे ऊपर उठा लिया और उसे घर पर लेकर गया। बढ़कर था वो जो एलिया में था उससे भी जो खुद मृत्यु है। बढ़कर था वो जो एलिया में था उससे उस यरूशलेम में यहूदिया में और उन पहाड़ियों में था। बढ़कर था वो जो एलिया में था उस स्वयं मृत्यु से। बढ़कर था वो जो एलिया में था उस कब्र से क्योंकि वो कब्र से मुक्त हो गया और वो मृत्यु से मुक्त हो गया और वो बस घर की ओर ऊपर एक रथ में चला गया। बढ़कर था वो जो एलिया में था। आप कहते हैं ओह ठीक है वो एक महान व्यक्ति था। एक मिनट रुकना। बाइबल ने कहा वो एक मनुष्य था जिसके पास दुख सुख थे आपके और मेरे जैसे। यह सही बात है लेकिन जब उसने प्रार्थना की उसने विश्वास किया उसे वह मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्थना की है। यीशु ने हमसे क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो विश्वास करो जो तुमने मांगा है वह तुम्हें मिल गया है वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने लगातार प्रार्थना की कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी और 3.5 वर्ष तक वहाँ पर बारिश न हुई। देखा बढ़कर था वो जो एलिया में था उस प्रकृति से। फिर बीमारों की चंगाई के बारे में क्या है? समझे बढ़कर है वो जो तुम में है उस बीमारी से। देखा क्योंकि यही रुकावट है आपको परमेश्वर के उसी नियम से रोक रही है जो बीमारी है। तो बढ़कर है वो जो तुम में है वो चंगाई देने वाला और सृष्टि करता है उससे जो शैतान है जो आपके जीवन की उसी योजना को रुकावट लाता है। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। देखा बढ़कर था वो जो एलिया में था। बढ़कर था वो जो यशाया में था उससे जो उस समय पर थे या कोई भी वे नबी थे क्योंकि उन्होंने समय को बीतते हुए देखा था। समझे बढ़कर है वो जो अय्यूब में था उससे जो यहाँ तक उसकी खाल के कीड़े और मृत्यु और कब्र में था क्योंकि एक दर्शन के द्वारा उसने प्रभु के आगमन को देखा और कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिन पर वह धरती पर खड़ा होगा और यदि मेरे इस शरीर को खाल के कीड़े नष्ट भी कर दें फिर भी मैं अपनी देह में परमेश्वर को देखूंगा। देखा बढ़कर है वो जो अय्यूब में था उससे जो मृत्यु है क्योंकि मृत्यु ने उसे उठाने की कोशिश की और वो इसे नहीं कर सकी क्योंकि उसने कहा मैं फिर से उठ खड़ा हो जाऊंगा और वह खड़ा हो गया। उसने ऐसा किया। सुनना हमारे पास समय होता तो इस पर और आगे जाना चाहता था लेकिन मैं प्रश्न को पूछना चाहता हूँ जो मैंने एक दिन चर्चा को सुना था इस बारे में मसीह तुम में है। अब इस पर रुके मत रहना जो कुछ भी तुमने किया है। यह कहकर मैंने कुछ कंपन को महसूस किया है। मैंने अन्य भाषा में बोला मैं आत्मा में नाचा। अब इसके विरोध में कुछ नहीं है यह सब ठीक है। देखो ऐसा है लेकिन इस पर रुके मत रहना। समझे आपका जीवन इस पर होना है यही है वो और इससे एक होना है। देखो फिर यह अपने आप में प्रमाणित होता है। अब क्या हो यदि आज रात अपने पूरे हृदय से आप कह सकें कि शेक्सपियर का आत्मा आप में रहता है वो शेक्सपियर तुम में रहता है। आप जानते हैं आप क्या करेंगे? आप शेक्सपियर के कामों को करेंगे। आप करेंगे आप कविताओं को लिखेंगे और अभिनय करेंगे और इत्यादि क्योंकि शेक्सपियर उस तरह का एक कलाकार था एक बड़ा लेखक था कविता को लिखने वाला। अब यदि शेक्सपियर आप में रहता है तो शेक्सपियर के काम आप करेंगे क्या? यह सही है। क्या होगा यदि बीथोवन आप में रहता है तो क्या होगा यदि बीथोवन आप पे रहता हो तो? आप जानते हैं आप क्या करोगे? आप बीथोवन के जैसे गीतों को लिखोगे, जो बड़ा संगीतकार है। आप बीथोवन के जैसे गीतों को लिखोगे क्योंकि बीथोवन आपका जीवन होगा। आप एक बीथोवन बन जाते हैं फिर से नए रूप में यदि बीथोवन आप में रहता हो तो। आप बीथोवन के कामों को करोगे क्योंकि बीथोवन आप में रहता है। क्या यह सही है? लेकिन जो तुम में है वो मसीह है, और यदि मसीह तुम में है तुम मसीह के कामों को करोगे। यदि मसीह तुम में है तो उसने ऐसा ही कहा, संत यूहन्ना 14:12 में, वो जो मुझ पर विश्वास रखता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। यदि आप मसीह में थे या मसीह आप में रहता है तब मसीह वो वचन है। क्या यह सही है? और वचन उसके नबियों के पास आता है, समझे? और यदि आप मसीह आप में रहता है, मसीह के काम आपके द्वारा किए जाएंगे, मसीह का जीवन आपके द्वारा जिया जाना है। जो काम उसने किए, जो जीवन उसने जिया, वो सब कुछ ये आप में जिएगा, बिल्कुल शेक्सपियर और बीथोवन के जैसे, या जो कोई भी आप में रहता है। यदि आपका जीवन, यदि आप अब भी अपना ही जीवन जी रहे हैं तब आप अपने ही कामों को करेंगे, समझे? लेकिन यदि आप मसीह के जीवन को जी रहे हैं तो मसीह आप में है। वो जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। यदि आप संदेहजनक और निराशा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में जो आप में है, तब मसीह वहाँ पर नहीं है। देखो, आप केवल उत्तेजित हैं। लेकिन यदि वो जीवन, वो मसीह आप में रहता है, उसका वचन वो पहचान लेगा और उसकी प्रतिज्ञा को वो करेगा, समझे? वो जान लेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें आपने उसे पा लिया है जो आपने मांगा है, और यह आपको दिया जाएगा। यदि आप उस पार से कहें हट जा और अपने मन में संदेह न करें, लेकिन विश्वास करें कि जो कुछ आपने मांगा है वह हो जाएगा, आपके पास यह होगा जो आपने कहा है। पिता दिखाता है और मैं वो करता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो कुछ वो पिता को करते हुए देखता है पुत्र वैसा ही करता है, समझे? और जब पिता उसे दिखाता है कि क्या करना है, बिना किसी बात के विफल हुए जाकर और कहा ऐसा होने दो, और ऐसा हो गया था। और वही मसीह आप में जीता है, यह हम में जीता है, फिर उसके काम हम करेंगे, क्योंकि मसीह वो वचन है और वचन की प्रतिज्ञा आपके लिए चंगाई को लाती है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? निश्चय ही। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथमा छोड़ूंगा, जैसे मैंने प्रार्थना की कुछ समय पहले, मैंने मांगा, वहाँ मत्ती 24 में देखो, या मत्ती 28:20 में देखा। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं वो व्यक्ति मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आकर और तुम में रहूंगा। फिर तुम अपने आप के और नहीं रहोगे, मैं तुम में रहूंगा, और वो बड़ा है जो तुम में है उससे जो संसार में है, समझे? इब्रानियों 13:8 कहता है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो जो नूह में था वो बढ़कर था उससे जो जल का न्याय था, और वो जो तुम में है उस अग्नि के न्याय से बढ़कर है, समझे? वो जो तुम में है बढ़कर है क्योंकि उसने न्याय के दाम को चुकाया और आपके लिए न्याय पर जय पाई। देखा, इसके बारे में कोई भी डर नहीं है। देखो, आप वहाँ उसमें हैं। जी हाँ, वो जो नूह में था वो बढ़कर है उससे जो जल का न्याय था, जिसने संसार को नाश किया जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि नूह ने विश्वास किया, और बढ़कर था वो जो उसमें था जिसने उस पर विश्वास किया, जिसने उससे बातें की उससे जो संसार में था, कि नूह सारे न्याय से बच निकला क्योंकि परमेश्वर का वचन उससे भी बढ़कर है, और उसने उसे सारे न्याय के ऊपर उठा लिया। बढ़कर है, हम कितना कुछ और समय के लिए इस पर बोल सकते हैं, समझे? बढ़कर है वो जो दाऊद में था उस भालू से जिसने उसकी भेड़ों को चुरा लिया। बढ़कर है वो जो दाऊद में था उस शेर से जिसने आकर और उसकी एक भेड़ को ले लिया। बढ़कर है वो जो दाऊद में था उस शत्रु से जो गोलियात था। वह बड़ा फिलिस्तीनी जो वहाँ पर खड़ा था, कुछ 12-14 फुट लंबा, उसके हाथों में 14 इंच की उंगलियां थी, नुकीले भाले को लिए हुए, और 2-3 इंच की मोटी स्टील या पीतल की धातु के साथ ढका हुआ। लेकिन दाऊद के अंदर जो था वो बड़ा था उससे जो गोलियात में था। उसकी भुजाएं शक्तिशाली थी, वह एक योद्धा था। कहा वो दाऊद को अपने भाले के नोक से उठाकर और उसे लटका सकता है और उसे उन पक्षियों को खिला देगा। और दाऊद ने कहा, तुम मेरे पास एक फिलिस्तीनी की नाई आए हो, एक फिलिस्तीनी के नाम से तुम मुझे फिलिस्तीनी ईश्वर के नाम में शराब देते हो, और कहा तुम अपनी बड़ाई मारते हो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम मेरे पास हथियार और भाले के साथ आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास प्रभु परमेश्वर के नाम से आया हूँ, और आज मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे कंधों से हटा दूंगा। और उसने इसे किया क्योंकि बढ़कर था वो जो दाऊद को हिम्मत देने के लिए प्रेरित कर रहा था। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो व्हील चेयर है। बढ़कर है वो जो तुम में है वो जो स्ट्रेचर है। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो कैंसर है। बढ़कर है वो जो तुम में है उन पीड़ाओं से। बढ़कर है वो जो तुम में है उस किसी भी चीज से जो शैतान आपके ऊपर डाल सकता है। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। बढ़कर है वो, जी हाँ, दाऊद बढ़कर था। दाऊद में क्या था? दाऊद में परमेश्वर था। वो हम में है, यही वो मसीह है। उसने हमारे लिए हरे शत्रु पर जय पाई। जब वो धरती पर था उसने पाप पर जय पाई, उसने बीमारी पर जय पाई, उसने मृत्यु पर जय पाई, उसने अधोलोक पर जय पाई और उसने कब्र पर जय पाई। अब वो हम में जयवंत की नाई रहता है। उसने बीमारी, अधोलोक, मृत्यु, कब्र पर जय पाई और हमारे लिए आता है ताकि हमें उन सारी चीजों से आजाद करे। और वो बड़ा है जो तुम में है उससे जो आपके ऊपर इन सारे धोखे की बातों को आप पर डाल सकता है। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। और इसी प्रकार से यह अद्भुत कार्य होते हैं। इसी तरह से उस दिन वे हवाएं थम गई। क्या ये मनुष्य जाति कर सकती है? नहीं श्रीमान, यह असंभव है। जब मैं खड़ा होकर पुकार रहा था और वे हवाएं तेज हो रही थी। और कितने लोग यहाँ पर हैं जो वहाँ पर थे? आइए देखें, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हर एक जन वहाँ ऊपर थे तब उस समय कोलोराडो पर, तो ठीक है। भाई फ्रेड, मैं सोचता हूँ वहाँ पर वो एक थे जो तब उपस्थित थे। मैंने सोचा भाई मैन यहाँ पर होंगे, लेकिन वो भाई एवांश, क्या वो नहीं है उस समय पर? भाई एवांश वहाँ ऊपर थे, जी हाँ, तो ठीक है। और जी हाँ, ध्यान दे, क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या इस तरह से यह घटित नहीं हुआ है? बारिश तभी रुक गई थी और हवाएं बहना बंद हो गई थी। यह क्या था? मेरे शब्द पर नहीं, क्योंकि उसने मुझे इसे करने के लिए कहा था। और बढ़कर है वो उससे जो भी कुछ प्रकृति में है। क्या ये वही परमेश्वर नहीं है जो लहरों को समुद्र पर शांत कर सकता है, उन हवाओं को वापस अपने स्थान में भेज सकता है? क्या वही वो एक है जो सूर्य को अंधकार में कर सकता है, सूर्य को वापस चमका सकता है? तो बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। देखा, तो ठीक है। अब इसलिए ये चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। संत योहन्ना 14:12। वो मसीह जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, वह उनका सृष्टि करता है। वह अब भी उतना ही सृष्टि करता है जैसे वह तब था। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने बीमारों को चंगा किया और पाप को नाश किया और इसे आप सबके लिए बदल दिया और आपके लिए आता है जिससे कि वो आपके साथ रह सके। उसने इन सब पर विजय पाई ताकि आकर और हमारे अंदर रहे। वो वही जयवंत है जो इन चीजों पर पहले से ही जय पा चुका है। इसे वचनों में साबित किया है। वापस आकर हर एक चीज पर जय पाता है और आपके लिए साबित करता है कि वो वही परमेश्वर है। और 1900 वर्षों के बाद यहाँ पर वो हमारे बीच में उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसने तब किए, जिसने मृत्यु, अधोलोक, बीमारी और कब्र पर जय पाई। यह मसीह है, ये ही वो वही है जो आप में है, वो मसीह है। जैसे योहन्ना ने कहा, वो जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है, वो मसीह था। वो बढ़कर है उससे जो सारे संसार में है, क्योंकि उसने संसार पर जय पाई। और वो बढ़कर है उन सारी चीजों से, क्योंकि उसने इसे हमारे लिए जय पाई। और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं उसमें से होते हुए, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिससे वो वापस आकर और उसके कामों को हम में से होकर कर सकता है, ताकि हमारे लिए साबित करे कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब वो धरती पर था उसने साबित किया, जब वो उन लोगों के बीच में खड़ा था, वह मसीहा था। वह उनके हृदय के विचारों को जानता था। और बाइबल ने कहा कि मूसा ने कहा कि वो एक नबी होगा। क्या यह सही है? वह हृदय की गुप्त बातों को जान लेता था। वह जानता था कौन से लोग कहाँ पर थे। वह जानता है उनके साथ क्या गलत हुआ है। क्या हमने ऐसा होते हुए देखा है? समय दर समय हम जानते हैं कि मरे हुए को जिलाया गया है उन ठीक मुर्दों में से। उनमें से तो कुछ 1.5 दिन तक मरे हुए थे। वो एक सुबह को मर गया और वे उसे यहाँ पर उस रात को लाने लगे और सारी रात को यात्रा करके और अगले दिन लगभग दोपहर को या दोपहर होने पर उसे जहाँ पर वो तंबू था उसमें लेकर आए। एक छोटा मरा हुआ बालक ठंड में और माँ की बाहों में पड़ा हुआ था, और प्रभु परमेश्वर ने जीवन को वापस लाया, जीवन के शब्दों को कहा और बालक गर्म हो गया और रोना आरंभ किया, इसे वापस माँ के बाहों में दे दिया। श्रीमती स्टेलियो वहाँ पर खड़ी हुई और इसे होते हुए देख रही थी, इसी कारण से वो उसके बालक के लिए बहुत रो रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे के लिए विमान के द्वारा जर्मनी में जाऊं, लेकिन प्रभु ने कहा इसमें मेरा हाथ है, तुम उसे फटकार नहीं सकते, देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब उसने मूसा से कहा चट्टान से बोलो, इसे मारना नहीं है, इसका मतलब था बोलो, प्रहार मत करो, समझे, आपको उसकी आज्ञा में रहना है, वो जो करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, उसे पहले परमेश्वर से इसे सुनना अवश्य है। अब परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है कि वह जीवित है, और क्योंकि वह जीवित है तुम जीवित हो। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि वो काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वही काम केवल इससे ज्यादा तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। उसने सारी चीजों पर जय पाई। वही वो एक है जिसने रोका, वही वो एक है जिसने उन गिलहरियों को बनाया। यह दो बार घटित हुआ था, एक बार चार्ली जो आपके स्थान पर घटित हुआ, और यह घटित हुआ था जब भाई लोग भाई फ्रेड और भाई बैंक्स और वे वहाँ ऊपर हमारे साथ थे। यह जर्मनी में घटित हुआ जब ये 15 ओझा लोग उनमें से हर एक जन मेरे पास चारों ओर थे और कहा क्योंकि बिल्ली और भाई आर्गन ब्राइट मुझे वे न देखने पाए, उन्होंने कहा तो ठीक है हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे यह तंबू उड़ जाए, और वे वहाँ नीचे बैठ गए उनके सम्मोहन के सामान के साथ और अपने देवता को बुलाने लगे, शैतान को, और यहाँ पर वो एक तूफान के साथ आता है। लगभग 30,000-40,000 जर्मन के लोग वहाँ तंबू में थे और वह तंबू ऊपर और नीचे इस तरह से उठने लगा था। उन्होंने और फिर उन्होंने कैंची से काटना शुरू किया और एक पंख को काटा और पीछे से इस तरह से उसे नुकीला बनाया, और वह कहते जा रहे थे, वह अपने सारे सम्मोहन के सामानों को लिए हुए और साथ ही 3 पवित्र शब्द को कह रहे थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा लू 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 लू, पिता पुत्र पवित्र आत्मा लू लू लू, इस तरह से करते जा रहे थे। और असल में वो तूफान आने लगा था, निश्चय वह वायु के शक्तियों का राजकुमार है शैतान, और उन्होंने तूफान को बुलाया, और अब भी वो बड़ा विशाल तंबू इस तरह से फैला हुआ था। ओ प्रभु, इसने लगभग एक शहर को घेर लिया था और इसे बनाया गया था, यह 2x4 गज का बना हुआ था और इसके ऊपर तालपत्री ढकी हुई थी, वह हवा वहाँ अंदर जा रही थी और इस तंबू को इस तरह से ऊपर उठा रही थी, और वो हवाएं और बिजली इस प्रकार लहराने लगी थी। मैं बस लगातार प्रचार करने लगा, और ओह वे केवल एक बड़े सम्मोहन के कामों को करते जा रहे थे, वे इस तरह से करते जा रहे थे, वे उन कुछ पवित्र शब्दों को बोल रहे थे, और उन्होंने कहा वो बड़े पवित्र शब्द हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों तरफ से इस तरह। फिर मैंने उन्हें झुकते देखा, वहाँ चारों ओर शैतान से घिरे हुए लेकिन बंधे हुए नहीं थे, और मैंने भाई लॉस्टर से कहा इसका अनुवाद मत करना, मैंने कहा भाई आर्गन ब्राइट केवल प्रार्थना करे, मैंने कहा प्रभु परमेश्वर धरती और आकाश के सृष्टि करता आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैंने यीशु मसीह के नाम में इस जर्मन की मिट्टी पर पैरों को रखा है क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, उस बादल की मुझ पर कोई शक्ति नहीं चलेगी, यह नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे अभिषेकित करके और इन लोगों के उद्धार के लिए यहाँ पर भेजा गया है, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ यहाँ से चला जा। और भी गर्जन होने लगी, बैंग 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 चली गई, गर्र दूर चली गई और ठीक तंबू के ऊपर से जाती हुई वापस उड़ गई, और सूरज चमकने लगा। 10 मिनट के अंदर ही वहाँ लगभग 10,000 लोग वेदी के चारों ओर थे और इत्यादि दया के लिए चिल्ला रहे थे, परमेश्वर के सामर्थ को देखने के लिए, क्यों बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है, समझे, बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है। उन बातों में पीड़ाओं को देखते हैं, ओह भाई बहन हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बढ़कर परमेश्वर है और वो तुम में है, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? अब मैंने ज्यादा समय को ले लिया है, ये 9 बजने में लगभग 10 मिनट है, और मैं जानता हूँ इन लोगों को बहुत दूर तक गाड़ी चलाकर जाना है, आइए हमारे सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं। ओ पिता परमेश्वर, आप कोलोराडो के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं वे बातें सच्ची हैं, और मैं इसे आपकी महिमा के लिए कहता हूँ जिससे कि ये लोग जान सके, सारे वैज्ञानिक रूप में यह साबित करने के बाद जो तस्वीर ली गई और वे पवित्र आत्मा के कार्य थे। और प्रभु आप जानते हैं कि वो मैंने लोगों को साफ साफ रीति से बताया है और हमेशा ही इसे करता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि आपने इसकी प्रतिज्ञा की है और आप यहाँ पर हैं, किसी को तो पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें से होकर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग देख सकें कि आप जीवित हैं और आप कल आज और युगानुयुग एक सा हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु आप दया करें और हमें अगुवाई करें, हमारे विचारों में हमें निर्देशित करें। वहां पर वे लोग बैठे हुए हैं जो बीमार और पीड़ित हैं, वहां पर वे लोग हैं, हो सकता है यदि उन्हें आपसे सहायता नहीं मिलती है तो वे मर जाएंगे, उनमें से बहुत से हो सकता है मार्ग के अंत पर हों जहां वे डॉक्टर उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। आप वो परमेश्वर हैं और आप कल आज और युगानुयुग एक सा हैं और आपकी उपस्थिति यहां पर है। और प्रभु हम नहीं जानते यह तीसरा खिंचाव क्या है, जैसे हमने इसे बताया है यह होगा, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन हम एक बात को जानते हैं, पहला खिंचाव सिद्धता था, दूसरा खिंचाव पांच होना था जो अनुग्रह था। और परमेश्वर मैं आज रात प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे इन बातों को कहने के बाद, वो जो तुम में है। और आपने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और कहा आप कुछ नहीं करते जब तक पिता आपको नहीं दिखाता है। और हमने देखा है जो आपने किया जब आप प्रेरित पत्रस को बताने में सक्षम थे कि वो कौन था, उसका पिता का नाम क्या था, नतानियल को बताया उसका लक्ष्य क्या था और वो वहाँ पर किस तरह से आया होगा, इससे पहले वो कहाँ पर था, उसने क्या किया था, कुएं पर स्त्री को उसके पापों को बताया और वो क्या थी, इन छह पुरुषों के साथ वह विचार में रह रही थी, उसके पहले से पांच पति थे और वो जिसके साथ वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। आप अब भी वही परमेश्वर है। आपने बताया यह बार्तिमुस के अंधेपन की परिस्थिति थी जब वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके हृदय में उसके पास एक दृष्टि थी कि वह देख पाएगा यदि वो यहोवा यीशु मसीह के कृतत्व में प्रकट हुआ था कि वो उसकी पुकार को सुनने में सक्षम हो सकता था। और वह चिल्ला उठा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो, और इसने आपको रोक दिया और आपने मुड़कर और उसे चंगा किया, और ओ पिता आप उसे कह रहे थे कि उसके विश्वास ने उसे बचा लिया है। वह छोटी रक्तहीनता स्त्री जो इस लहू के बहने की बीमारी से गुजर रही थी और जीवन का बदलाव और बहुत वर्षों से यह नहीं रुक सका था, उसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर खर्च कर दिया था और उनमें से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। वो स्त्री एक दिन आपकी सभा में से होकर आई जब आप एक मनुष्य से वहाँ गलीली पर बातें कर रहे थे, जब आप याइर के घर की ओर अपने रास्ते पर थे। इस छोटी सी स्त्री ने अपने हृदय में कहा, इस बात के पीछे कोई वचन नहीं था, यदि मैं केवल उसके वस्त्रों को छू लूं, मैं विश्वास करती हूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके पास अपनी इच्छा थी जब उसने आपके वस्त्रों को छुआ, और आपने उससे कहा तुम्हारे विश्वास ने इसे किया है, उसकी चाहत को बताया और वो चंगी हो गई थी। हमें वचन में बताया गया कि आप एक महायाजक हैं जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, हमेशा ही बिचवाई करने के लिए रहते हैं, और यह भी कि आप इस समय महायाजक होने के नाते जिसे हम अपनी दुर्बलता अनुभव करने के द्वारा छू सकते हैं। प्रभु परमेश्वर इसे प्रदान करें कि हर एक व्यक्ति जो आज रात यहाँ पर है होने पाए, उन्हें आज रात आपको छूने का सौभाग्य हो उस महायाजक को, और वे चंगे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के महिमा के लिए मैं इसे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब मैं नहीं, क्या प्रार्थना के कार्ड हैं? मैंने बिली को बताया था, क्या हरेक को प्रार्थना का कार्ड मिला है? तो ठीक है, ये ठीक है, मैंने उसे बताया था इसे बाहर मत देना। मैंने सोचा मैं थोड़ा ज्यादा समय को लूंगा और मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन देखो, और आपने बताया जब मैंने कहा मैं 8:30 बजे तक निकलने की कोशिश करूंगा, आप लोग हंस पड़े, और मैं जानता था कि आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। देखा क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने हमेशा ही इसे करने की कोशिश की है मित्रों, ना ही कभी किसी के कहने से भाई ब्रैनम ने ऐसा किया, भाई ब्रैनम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझे, ये तो यीशु मसीह है, वो जो मुझ में है तुम में है, आपको केवल इसे विश्वास करना है, क्या यह सही नहीं है? देखा वह जो तुम में है वो उन बीमारियों से बढ़कर है। अब कितने लोग यहाँ पर उनके शरीर में बीमार हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि आपके पास इतना विश्वास है कि आप महायाजक को छू सकते हैं, अपने हाथ उठाकर कहें मैं इसे विश्वास करता हूँ, अच्छी बात है, ओह यह तो पूरी तरह से हर कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता कि आपकी क्या आवश्यकता है, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छू ले, अपने हाथों को उठाएं, देखा समझे, तो ठीक है। खुले रूप से यहाँ पर कोई भी नहीं है जिनके बीमारी के बारे में मैं कुछ भी जानता हूँ, ठीक अभी वर्तमान समय पर। लेकिन यह जो लड़का यहाँ बैठा है, मैं उसे जानता हूँ। मैंने उसके लिए बहुत सी बार प्रार्थना की है। मैं उसके नाम को नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन वो नीचे कंटकी से है। वो मुझे हर समय लिखता रहता है। जो भाई और बहन वुड और उनका खास मित्र है और वहाँ पर आता रहता है, और वह लंबे समय से सभा में आता रहता है। केवल वही वो व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। अब भाई डॉज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो ठीक है कि नहीं, तो वो यहाँ पर नहीं बैठा होता था। वो एक दिन बहुत ही बीमार था और प्रभु ने उसे चंगाई दी थी। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ और मैं नहीं जानता यहाँ पर ये बैसाखियाँ किसकी है। हो सकता है उस व्यक्ति की जो वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता। और मैं बहुतों को जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो जानता है। इस समय पर मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता है। यह यहाँ पर इस भवन में कठिन बात है, क्योंकि देखो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। अब यहाँ पर ये ऐसा है, जब आप एक स्थान पर आते हैं, अब मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ, कहता हूँ तो ठीक है, हम हर एक को प्रार्थना के कार्ड देंगे और उन्हें कतार में खड़ा करेंगे, ऊपर यहाँ मंच पर आएंगे, कोई तो चला जाता है। अब मित्रों, मैं अपने हृदय को खोल कर और आपको कुछ तो बताऊंगा। आप इसे नहीं छिपा सकते हैं। आप जो भी बस सोचते हैं, मैं इसे जानता हूँ। यह सही बात है, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, समझे। और कभी कभी आप कहते हैं, भाई मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि इसलिए कि आप एक सीमा तक विश्वास करते हैं, समझे। मैं जानता हूँ। और ठीक यहाँ पर जब मैं बिल्कुल ठीक अभी वो अभिषेक मुझ पर अब आ रहा है, आप देखना, और मैं बस उस नाड़ी कंपन को महसूस कर सकता हूँ, एक धड़कन के जैसे। देखो, विभिन्न स्थानों पर से धड़कन को देखा। लेकिन अब और अविश्वास नहीं करना, सारे संदेश में विश्वास करना, इसे विश्वास करना। यदि क्या यह नहीं है, तो यदि यह बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, तो तब आप इसे विश्वास मत करना। लेकिन यदि यह बाइबल में है, तब वह पवित्र आत्मा है जो हम में रहता है, वह कर्तव्य से बाध्य है ताकि उस कार्य को करे। यदि हम विश्वास करते हैं, तो क्या यह सही है? मैं जानता हूँ यह कठिन है। देखो, कुछ भी आसानी से नहीं आता है। यह उसके लिए मरना कठिन था, जिससे कि वह आपके लिए प्रस्तुत किया जा सके। यह उसके लिए कलवरी पर जाना कठिन था। वह बने रहना चाहता था, इतना तक कि वह चिल्ला उठा, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, समझे। देखा, वह जाना नहीं चाहता था। वह एक जवान पुरुष था और उसके पास उसके भाई लोग थे। उसने उन्हें प्रेम किया जैसे मैं आपसे करता हूँ, लेकिन वह नहीं जी सकता था और उन्हें भी जीना है, इसलिए वह मर गया जिससे कि हम जी सके। यह आसान नहीं था, उसे इसे करना था। देखो कैसी एक मृत्यु उसके सामने रखी थी। पिता, वह घड़ी आ चुकी है, और क्या मैं प्रार्थना करूं कि इस प्याले को मुझसे दूर करो? नहीं, उसने ऐसे नहीं करना चाहा। वह चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अब देखो, यदि आप उसी बात पर विश्वास करेंगे, तो अब नहीं नहीं, इस पर छाया मत करना। इसे केवल विश्वास करें, केवल पूरी तरह से इसे विश्वास करें, संदेह न करें, आप इसे विश्वास करें। यदि मैं लोगों को ऊपर एक प्रार्थना की कतार में लाता हूँ और मैं कहता हूँ तो ठीक है, अब ये व्यक्ति, आप जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता। नहीं, ये सही बात है भाई ब्रैनम। फिर ठीक वहाँ पर आप किसी को तो बात करते हुए देखेंगे, नाना, लेकिन वो तो उसे पढ़ रहा है जो आपने प्रार्थना के कार्ड में लिखा है, मनो को पढ़ने वाला। ये बस सचमुच में इसे करेंगे। फिर मैं कहूँगा तो ठीक है, अब इस रविवार को हम प्रार्थना का कोई भी कार्ड नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ हर एक जन यहाँ पर हो। आप जो एक अजनबी है, इससे पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं, आप खड़े हो जाएं। देखा, और फिर पवित्र आत्मा वापस मुड़कर और परखता है कि उसके अंदर क्या है। देखा, क्या यह सही है? आपने इसे दोनों तरफ से देखा है। ओह, तो उसके साथ कुछ तो गलत है। देखा, समझे, वहाँ कोई तरीका नहीं है। आप नहीं, देखो, जब तक शैतान कब्जा किए होता है, वो केवल आपको कुछ भी विश्वास करने को लगाएगा, और वह आपको हर एक गलती को दिखाएगा जो मैं करता हूँ, और मेरे पास बहुत सी गलतियाँ हैं, वह आपको दिखा सकता है। आप उसकी ओर मत देखना, आप उसकी ओर मत देखना, मैं एक मनुष्य हूँ, समझे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का ये वचन सच्चा है और मैं इसके द्वारा जीने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं यहाँ से बाहर जाकर और गलत बातों को करना आरंभ करता हूँ जो सही नहीं है, पाप करना और शराब पीना या सिगरेट पीना या उन चीजों को करना जो सही नहीं है, अब आप आकर मुझे वहाँ बुलाते हैं, कारण इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर संसार को छोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं, यह होने से पहले मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ, समझे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक मैं वैसा जीने की कोशिश करता हूँ जो सही है और वो करता हूँ जो सही है, देखो, और एक मसीह के जैसे जीने की कोशिश करना चाहता हूँ, और तब परमेश्वर उसके वचन को लेता है और इस पर बने रहने के द्वारा मेरी सुनेगा। भले ही इससे मुझे मेरे मित्रों और संसार की प्रसिद्धि की कीमत चुकानी पड़े और इस तरह की बातें होनी है, बहुत से लोगों के द्वारा नफरत और संस्थाओं के द्वारा निकाला जाना, फिर भी मैं इस वचन के प्रति सच्चा बना रहना चाहता हूँ। यह परमेश्वर का वचन है और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। सो यही परमेश्वर का वचन है और जिसे मैं आपको बताता हूँ, और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और वो अब हम में है। और यदि शेक्सपियर का जीवन मुझमें था, मुझमें रहता है, यदि शेक्सपियर मुझमें रहता, क्या मैं शेक्सपियर के कामों को नहीं करूंगा? यदि बीथोवेन मुझमें है, क्या मैं बीथोवेन के कामों को नहीं करूंगा? यदि दिलिंगर का आत्मा मुझमें था, यदि दिलिंगर मुझमें रहता है, क्या मैं एक जॉन दिलिंगर नहीं बनूंगा? यदि बीथोवेन मुझमें था, क्या मैं एक बीथोवेन बनूंगा? देखा, यदि क्रास्तो मुझमें था, मैं क्रास्तो बनूंगा। देखा, और यदि यीशु मसीह मुझमें है, उसके कामों को मैं करूंगा, क्योंकि यह वही है। और क्या उसने नहीं कहा कि वही बातें जगह लेंगी? समझे, अब वो क्या करता यदि वो यहाँ पर खड़ा होता, यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है? उसने कहा, मैं केवल वही कर सकता हूँ जो पिता मुझे करने के लिए दिखाता है। क्या यह सही है? तो इसी तरह से उसने इसे कल भी किया था। अब क्या वो एक सा है? बीमारी के बारे में क्या है? आपका दाम पहले से ही चुकाया गया है। आप में से हर एक जन अपनी बीमारी से पहले ही चंगाई को पा चुका है। क्या यह सही है? क्योंकि इस आप में से हर एक जन को क्षमा किया गया है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना है। आप में से हर एक जन चंगा हुआ है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना है। अब इसे साबित करना कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, यदि वो यहाँ पर खड़ा होता था, वो आपको आपके अविश्वास के साथ चंगा कर ही नहीं सकता है, और आपको इसे विश्वास करना होता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको ठीक अभी यहाँ विश्वास करना है, इसे उसी तरह से होना होगा। देखो, क्योंकि उसके दिनों में वो बहुत से बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर सका, क्योंकि उनके पास अविश्वास था। ये सही है, बहुत से बड़े बड़े कार्य को वो आज नहीं कर सकता है अविश्वास के कारण। अब ये कौन था जो पहले से ही ये बता सका? परमेश्वर। ये कौन था जिसने इसे कहा? परमेश्वर। ये कौन था जिसने इसे किया? परमेश्वर। वह कौन है जिसने कहा वो भालू, हिरन, हैंडियर और ये सारी दूसरी बातें और वो सारी बातें जो घटित हुई थी? ये कौन था जिसने इसे कहा? उसने, मसीह ने। यही हम में है, हम में से होकर खुद भविष्यवाणी कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। किसने हवाओं को रोका? किसने गिलहरियों की सृष्टि की? वही वो एक है जिसने अब्राहम के लिए एक मेढे की सृष्टि की। जब उसने उसे यहोवा यीरे बुलाया, वे छुटकारे के मिश्रित नाम अभी भी उसके लिए लगाते हैं। वह अब भी यहोवा यीरे है। प्रभु अपने खुद के लिए एक बलिदान का प्रयोजन कर सकता है। अब आप में से हर एक जन, मैं अब आपकी गंभीरता से सच्चाई को चाहता हूँ। अब यदि आप असल में अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगे, हमारे बीच में और अगले 5 मिनट के बाद एक भी कमजोर व्यक्ति नहीं रहेगा, या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनके पैरों पर वे चंगे होकर खड़े हो जाएंगे। यदि आप इसे विश्वास करेंगे तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अब आइए केवल देखें, यदि वो हमारे लिए आकर और अपने आप को प्रकट करे जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु यीशु, अब आप मेरी सहायता करना और मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा। प्रभु, जो कुछ भी जानता हूँ, किस तरह से मेरे पापों और अपराधों की क्षमा करना, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब आइए इस एक तरफ हो जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे। विश्वास करना, भरोसा रखना, संदेह मत करना। जो कोई मुझे नहीं जानता है, यदि हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि दर्शन कहाँ पर जाता है, मुझे तो केवल इसके लिए देखना होगा। और यदि यह इसे करता है तो आप फिर इसे जान जाते हैं कि यह सही है या नहीं। आप केवल विश्वास करें और संदेह न करें। यदि वो इसे करेगा, क्या विश्वास करेंगे? देखो, इस सब के बाद जो आज उसने किया है, समझे, केवल अपनी चंगाई को स्वीकार करें। देखो, कहते हुए, प्रभु, मैं अब यीशु मसीह को छू रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, अब होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर इसे प्रदान करे। बढ़कर है वो जो तुम में है, वो मसीह उससे जो संसार में है। अब सभा में जहाँ पर हम उसे छूते हैं, वह वापस खुद को प्रकट करता है, जैसे स्त्री ने मसीह में से होते हुए परमेश्वर को छुआ और उसकी आवश्यकताओं को वापस प्रकट किया। मैं अब यहाँ कोने पर देखता हूँ, यहाँ एक पुरुष जैसा दिखाई देता है जो बहुत ही गंभीर अवस्था में है। नहीं, ऐसा नहीं है, यह एक स्त्री है। जो एक पुरुष के लिए प्रार्थना कर रही है और वो पुरुष यहाँ पर नहीं है, लेकिन यह एक स्त्री है। मैं देखता हूँ कि वो स्त्री, यह उसका पिता है और वह कैंसर से मर रहा है। और बहुत ही गंभीर अवस्था में है। वह पुरुष यहाँ पर नहीं है, वो किसी और स्थान पर है, वो यहाँ तक इस देश का भी नहीं है, ये वो जॉर्जिया में है। केवल प्रार्थना करते रहे। अब क्या तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हो? देखो, केवल प्रार्थना करते रहो। उस स्त्री का नाम जो प्रार्थना कर रही है श्रीमती जॉर्डन है। वो जॉर्जिया से नहीं है, वह उत्तर कैरोलिना से है। यदि यह सच है महिला, तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ठीक है, सारी सच्चाई है। क्या तुम इसी बात के लिए प्रार्थना कर रही थी? तो ठीक है, तो ठीक है। क्या आप ये विश्वास करती हैं वो जो तुम में है बढ़कर है उससे जो संसार में है? क्या विश्वास करते हैं कि वो जो, देखो यहाँ पर कुछ तो और भी है, तुम्हें आरंभ के दिनों में एक बड़ा प्रशिक्षण मिला है या कुछ तो और, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम मिली जुली हो या किसी एक प्रकार के मसीही। क्या आपका पिता एक सेवक नहीं है या कोई तो इसी प्रकार से आपके कोई तो लोग या ऐसे कुछ? तुम्हारा पति यही वो है। मैं देख सकता हूँ कि कोई तो आपके पास खड़ा है। तू सुसमाचार को प्रचार कर रहा है और आप एक कलीसिया में थी, वो आपके साथ जुड़ा हुआ था, तो ठीक है, वहाँ पर तुम हो। अब वो महिला मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उस स्त्री को जानता है। अब तुम्हारे बटुए में कुछ है, एक छोटा सा रुमाल या कुछ तो है, तो ठीक है। फिर तुम जब तुम बैठ जाओगी तो अपने हाथों को उस रुमाल पर रखना और संदेह मत करना, और वो जो तुम में है वो बढ़कर है उससे जो तुम्हारे पिता को खत्म कर रहा है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करना तो तुम्हारे साथ वैसा ही हो जैसा तुम विश्वास करती हो। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं उस स्त्री को नहीं जानता। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम पहली बार मिले हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी उसे देखा है, लेकिन वह वहाँ एक व्याकुल अवस्था में बैठी हुई प्रार्थना कर रही है। और वही परमेश्वर जो पीछे मुड़कर और उस स्त्री को लहू की बीमारी के बारे में उसे बता सकता है, वही परमेश्वर यहाँ पर है। यह दिखा रहा है वह जो तुम्हारे अंदर है संसार पर जयवंत हुआ है। आप विश्वास करते हैं? यदि आपके पास विश्वास है तो संदेह मत करना। कैंसर को बताते हुए मैं उस काली छाया को फिर से देख रहा हूँ। यह ठीक यहाँ पर बैठी हुई स्त्री के ऊपर है। उसे गले का कैंसर है और वह एक बुरी आकृति में है, और वह प्रार्थना करती आ रही है और अपनी चंगाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है। श्रीमती ब्रूटोन, यदि आप विश्वास करेंगी, मैं उस स्त्री को नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हो, सचमुच वो चीज, मैं आपको इसे समझाता हूँ जो तुम करने की कोशिश कर रही हो। तुमने अपनी आवाज को खो दिया है इस वजह से, और तुम अपनी आवाज को वापस लाने के लिए प्रार्थना करने की कोशिश कर रही हो। क्या यह सही बात है? अपने हाथों को इस तरह से हिलाएं। अब वह स्त्री मेरे लिए एक अजनबी है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। क्या उसे देखा है? यह सही है, वहाँ वहाँ पर है वो। देखा, बढ़कर है वो जो तुम में, वो विश्वास है जो उसे छू सकता है, उससे जो तुम्हारे गले में है। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हो? बहन लार्सन, मैं आपको जानता हूँ, ये मेरी मकान मालकिन है, लेकिन बहन लार्सन तुम डॉक्टर के पास गई थी या कहीं तो किसी और स्थान पर, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए गई थी। ये सही है? क्या ये सही बात है? बढ़कर है वो जो तुम में है बहन लार्सन, उससे जो संसार में है। यीशु ने कहा, मैं एक अजनबी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया। इतना ही नहीं, तुमने जो छोटों में से किसी के एक के साथ किया, तुमने वो मेरे लिए किया है। ओ स्वर्गीय पिता, दयावंत होना। आप क्या सोचती हैं? तुम्हें भी एक ऑपरेशन के लिए जाना था। तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। क्या यह सही बात है? तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो। आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। आप ये विश्वास करती हैं? तुम वहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए थी, तुम यहाँ पर नहीं रहती हो। तुम नजदीकी बेडफोर स्प्रिंग विले में ऐसा ही कुछ है, वहीं पर जहाँ स्प्रिंग विले है श्रीमती बुटोन है। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करना, मेरा मतलब ये नहीं है। श्रीमती पार्कर, यही आपका नाम है, क्या यह सही है? बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्या यह सही है? क्या तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हो? फिर आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप विश्वास करती हैं तो। आप इस सब के बारे में क्या सोचती हैं बहन? मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे लिए एक अजनबी हैं। क्या आप मुझे उसका नबी होने का विश्वास करती हैं? आप करती हैं। धन्यवाद, परमेश्वर इसका आदर करेगा। आप हैं श्रीमती वाइट, आप फोर्ट बर्थ टेक्सास से आई हैं। आपको एक मांसपेशियों की बीमारी है, एक गंभीर अवस्था में है, आप बहुत बीमार है, आपके लिए कोई आशा नहीं है जहाँ तक चिकित्सक विज्ञान का संबंध है। आपके पति, उसे एक आत्मिकता की आवश्यकता है जिस पर वो प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारा वहाँ पर एक पुत्र है, उसकी पीठ पर तकलीफ है और हृदय की तकलीफ है। तुम्हारा एक छोटा लड़का है जो उसकी गोद में है, वो छोटा लड़का एक तरह की बोलने की तकलीफ में है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। यदि यह सही है तो अपने हाथ को ऊपर उठाएं। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है, क्या आप यह विश्वास करते हैं अपने पूरे हृदय से? इस सब के साथ अब आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। अब वह इस इमारत में से होकर गुजरा है, उसने आपको साबित किया है कि वह परमेश्वर है। बढ़कर है वो जो तुम में है उससे जो संसार में है, यह प्रभु परमेश्वर है। अब जो तुम में है, आइए हम उसे प्रधानता देंगे, उसे आपकी बातों को हाथ में लेने देंगे। आप अपने हृदय में ही कभी कहें, यदि आप अपने पूरे हृदय से कह सकते हैं और इसे विश्वास करें, वह बीमारी जो मेरे शरीर में थी चली गई है, समझे? मैं अब और पीड़ित नहीं हूँ, अब मुझ में कोई बीमारी नहीं रही। वो बढ़कर है जो मुझ में है उससे जो मेरे शरीर में है, वो जो मेरे हृदय में है बढ़कर है उससे जो मेरी देह में है। इसलिए वो जो मेरे हृदय में है उसने आकाश और धरती की सृष्टि की। मेरी देह शैतान के द्वारा भ्रष्ट हो चुकी है और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ ताकि वो इसमें रहे। इसलिए शैतान, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरे शरीर को छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम में मुझ में से बाहर निकला। देखा, आप इसे विश्वास करते हैं? अब आइए सब अपने अपने तरीके से प्रार्थना करेंगे। हर एक जन, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सर्वसामर्थी परमेश्वर, धरती और आकाश के सृष्टि करता, जीवन के आधार, हृदय के रहस्य को प्रकट करने वाले, आपने कहा वो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चौका है जो हमारे मनों के विचारों को भी जान लेता है। यही वो कारण है जब वो वचन देदारी हुआ, इसने जान लिया वे किस बारे में सोच रहे थे। जब उसने कथित विचारों को जान लिया था और वो वचन था, और उस वचन ने उनके हृदय की गुप्त बातों को जान लिया, और वो वचन अब भी वही वचन है, और आज रात हम इसे खुद अपने आप में हमारे अंदर प्रकट होते हुए देख रहे हैं 2000 वर्षों के बाद, क्योंकि उसने इसे पन्नों पर लिखा और यहाँ पर इसे प्रमाणित कर रहा है, इसे दिखा रहा है कि ये सही है। यहाँ पर रुमाल रखे हुए हैं, बीमार लोग हर कहीं पर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ वो महान पवित्र आत्मा जो उपस्थित है, जो इन बातों को दिखाता है, जो इन चीजों को बताता है, और यह कभी भी चूकता नहीं है, लेकिन ये जो सच्चाई है ना ही यह एक बार भी चूक सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर है। वो इन रुमालों को उसकी उपस्थिति से अभिषेक करे और हर एक व्यक्ति को चंगा करे जिस पर वे इसे रखते हैं, और वो परमेश्वर जो जीवित हो सकता है 2000 वर्षों के बाद और पापियों के हृदय के अंदर खुद को आकार दे सकता है, जो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, और उसके वचनों को उनके मरणहार होठों के द्वारा बोल सकता है और इसे घटित होते देखता है, बिल्कुल वैसे ही जो उसने प्रतिज्ञा की है। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे मांगता हूँ कि हम पर दयावंत होना और होने पाए। हर एक स्त्री और पुरुष जो यहाँ पर उपस्थित बैठा है, जिनके पास किसी भी प्रकार की बीमारी या पीड़ा है, और जैसे मूसा ने लोगों के लिए खुद को एक दरार में डाल दिया, आज रात मैं अपने हृदय को आपके सामने रखता हूँ प्रभु, और उस पूरे विश्वास के साथ जो मेरे पास है, जो आप पर है, जिसे आपने मुझे दिया है, मैं उन्हें देता हूँ। जैसे पतरस ने वहाँ जो उस सुंदर फाटक कहलाता है वहाँ पर कहा, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ, नाज़रीन यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। और वे व्यक्ति लंगड़ा था और कुछ क्षणों के लिए कमजोर पड़ा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया, उसने अपने घुटनों पर शक्ति को पाया और उसने परमेश्वर के भवन के अंदर रेंगते हुए और स्तुति करते हुए और परमेश्वर को धन्य कहते हुए प्रवेश किया। आप वही हैं जो कल आज और युगानुयुग एक सा है, और उसके प्रेरित ने कहा जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यह विश्वास था, और मैं कहता हूँ मेरे पास जो है मैं इसे श्रोतागण को देता हूँ। नाजरीन, यीशु मसीह के नाम से अपनी बीमारी को इनकार करो, क्योंकि बढ़कर है वो जो तुम में है उस शैतान से जो आपके जीवन को लेने की कोशिश करता है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप छुड़ाए हुए हैं। मैं शैतान को इन लोगों से निकलने की आज्ञा देता हूँ। होने पाए जिस परमेश्वर ने उस तूफान को उस दिन पीछे हटा दिया, और वो परमेश्वर जिसने हवाओं और लहरों को शांत किया, होने पाए वे देखें कि हर एक बीमारी इन लोगों से निकाल दी गई है, और परमेश्वर की सामर्थ इस घड़ी में उनके जीवन में प्रमाणित हुई है। होने पाए हर एक पापी पश्चाताप करे। होने पाए हर एक व्यक्ति जो आपके नजदीक नहीं है वो इस घड़ी पर सही कर लें, और होने पाए ये यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो जाए। मैं आपका पास्टर होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, मेरे पास जो विश्वास है उससे मैंने परमेश्वर से मांगा है कि इसे आप पर रख दे। मैं विश्वास करता हूँ मैं उसे पालूंगा जो मैंने मांगा है। अब यदि आप मेरे साथ इसे विश्वास करेंगे, अपने पूरे हृदय से भरोसा करते हैं जो मेरे पास है मैं इस घड़ी के लिए आपको देता हूँ, और अब आप यीशु मसीह के नाम से जो परमेश्वर का पुत्र है अपनी पीड़ा को और अपनी बीमारी को इनकार करें, और उससे कहें तुम्हें जाना होगा क्योंकि आपके पास आपका विश्वास है, साथ ही मेरा विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थ के साथ जिसकी सर्व उपस्थिति यहाँ पर है, ताकि इसे प्रमाणित करे और साबित करे कि वो यहाँ पर है जो आपको इस समय पर चंगाई देगा। क्या आप यह विश्वास करती हैं महिला जो इस खाट पर पड़ी हुई है, हालांकि तुम्हारी मांसपेशियां ऐसे हो गई हैं जैसे वे इसे कहते हैं स्क्लेरोसिस और जो कुछ भी यह है, और आप चल सकती हैं यदि आप कोशिश करेंगी? खड़ी हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में उनकी सहायता कीजिए, वो चलने लगेंगी। क्या आप विश्वास नहीं करती? वे बाकी के सारे लोग खड़े हो जाएं, और उसकी घुटने की हड्डी ने शक्ति पाई है। अब अपने हाथों को उठाते हुए और उसे स्तुति देंगे। महान यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम खुद को चंगाई के लिए आपको सौंपते हैं। आमीन।